स्वामी तुलसीदास और राम भक्ति व्यक्तित्व बाह्य साक्ष्य भक्त प्रवर श्री नाभादास जी ने श्री नाभादास जी का नाम नारायण दास था। श्री प्रिया दास जी की भक्ति रसबोधिनी टीका निर्माण संवत 1769 के कवित्व संख्या 12 के अनुसार आप जन्मांध थे और महात्मा अग्रदास के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास और नाभादास समकालीन है। ने गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व पर निम्नांकित 56 में अपने विचार प्रकट किए हैं। त्रेता काव्य निबंध करीब सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तनि सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रत धारी, संसार अपार के पार कौ सुगम रूप नवका लय, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, आदि कवि वाल्मीकि ने त्रेता युग में रामायण नाम का प्रबंध काव्य बनाया था, जिसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्यादि परायण प्राणियों तक का उद्धार करने वाला है। वही वाल्मीकि कलयुग के कुटिल जीवों का भव सिंधु से उद्धार करने के लिए तुलसीदास के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनका लिखा हुआ रामचरितमानस संसार सागर से पार कराने वाली नाव के समान है। गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के चरण कमलों के प्रेम रस से मत्स्य मधुक की भांति अनन्य व्रतधारी थे और दिन रात राम नाम का जाप किया करते थे। इस छप्पर से गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में इतना ही ज्ञात होता है कि वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे। वे कौन थे, किस माता पिता से, किस कुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, इन बातों पर इस छप्पर से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। भविष्य पुराणकार ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, विख्यात तुलसी शर्मा पुराण निपुणा कवि नारी शिक्षा समादाय राघवानंद मागत शिष्यो भूत्वा स्थितः काश्याम रामानंद मते स्थितः प्रतिसर्ग पर्व 3 अध्याय 22 पृष्ठ 363। इस पुराण के अनुसार तुलसीदास ब्राह्मण थे, कवि थे, पुराण ग्रंथों के पारंगत विद्वान थे, रामानंद मतानुयायी थे, राघवानंद के शिष्य थे और काशी में रहते थे। अपनी पत्नी से शिक्षा ग्रहण करके वे भगवत भक्त बने। भविष्य पुराण के ये श्लोक तुलसी के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश डालते हैं, परंतु इनमें कही हुई बातें सर्वमान्य नहीं है। राघवानंद स्वयं स्वामी रामानंद के गुरु थे। रामानंद की शिष्य परंपरा में किसी दूसरे राघवानंद का अभी तक पता नहीं चला। विद्वानों के बहुमत के अनुसार तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे और उनके गुरु महात्मा नरसिंह दास या नरहरि दास थे। प्रिया दास जी ने भक्तमाल की टीका में तुलसी पर 11 कवित्व लिखे हैं, जिनका सार इस प्रकार है। तुलसीदास का अपनी पत्नी से प्रगाढ़ स्नेह था। एक दिन वह इनसे बिना पूछे पिता के घर चली गई। वे अभी दौड़े हुए उसके पास पहुँचे। इन्हें आया देखकर स्त्री लज्जित हो कहने लगी, मेरे हार श्याम से जितना प्रेम है उतना यदि राम से होता तो दोनों लोकों में सुख और सुयश प्राप्त होता। पत्नी के शब्दों को प्रभु प्रेरित समझकर तुलसीदास विरागी बनकर काशी चले गए। काशी में गोस्वामी जी नित्य गंगा पार शौच करने के लिए जाते थे और शेष जल को एक वृक्ष की जड़ में डाल देते थे, जिसे पीकर एक दिन एक प्रेत ने इन्हें निकट ही रामायण सुनने के लिए नित्य आने वाले घृणित रूप धारी हनुमान द्वारा राम दर्शन करने की विधि बता दी। तुलसी कथा में पहुंचे और हनुमान को पहचान गए। हनुमान संकेत द्वारा इन्हें चित्रकूट ले गए, जहां तुलसी को राम दर्शन हुए। काशी में एक बार गोस्वामी जी के स्थान पर चोर चोरी करने आए, पर चारों ओर धनुर्धर श्याम किशोर को पहरा देते देखकर विस्मित हो गए और अंत में राम भक्त बन गए। एक दिन तुलसी ने एक मृत ब्राह्मण की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और राम भक्ति के प्रताप से उसके मृत पति को जीवित कर दिया। यह समाचार सुनकर अकबर ने इन्हें अपने पास बुलाया। तुलसीदास अकबर के समीप गए और वानर उपद्रव के उपरांत अकबर से सम्मान विदा लेकर उन्होंने वृंदावन में आकर श्री नाभादास जी का दर्शन किया। वृंदावन में श्री मदन गोपाल के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आपने अपने इष्ट देव राम का स्मरण किया और कहा जाता है कि श्री कृष्ण का विग्रह धनुर्धर राम के रूप में परिणत हो गया। एक दिन एक ब्रजवासी ने कहा, श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, राम तो अंशावतार है, फिर आप उनका भजन क्यों करते हैं। तुलसी ने उत्तर दिया, मैं तो अपने राम को आज तक दशरथ पुत्र ही समझता था, आज आपने उन्हें ईश्वर भी कह दिया, यह मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है। जो जगदीश तो अति भलो, जो भूपति तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भर राम चरण अनुराग। 91 दोहावली। प्रियादास जी के उपर्युक्त कथन से भी तुलसी के व्यक्तित्व का विशद ज्ञान नहीं होता। उससे भक्ति मार्ग की अनुरंजन कारिणी चमत्कार वादिता ही विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है। स्त्री शिक्षा वाली उक्ति का समर्थन भविष्य पुराण के साथ केवल दंतियां भी कर रही है। अकबर से भेंट करने की बात भी असंभव नहीं जान पड़ती। श्री रूप कला जी ने भक्तमाल की टीका पर लिखे हुए अपने भक्ति सुधा स्वाद तिलक के पृष्ठ 766 पर काशी जाने से पूर्व तुलसी का वाराह क्षेत्र में पहुंचकर रामानंदीय महात्मा श्री नरहरी दास से राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने का वृत्तांत लिखा है। उन्होंने पृष्ठ 767 पर राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में वे श्री गंगा वाराह क्षेत्र सोरों के समीपवर्ती तारी को मान्यता देते हैं। राजापुर में तुलसी ने विरक्त होने के पश्चात निवास किया था। उनके मतानुसार तुलसी का जन्म संवत 1589, पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी है। पवित्र रामायण में तुलसी ने अपना नाम राम बोला लिखा है। मानस मयंक के रचयिता पंडित शिवलाल पाठक के मतानुसार गोस्वामी जी संवत 1554 में प्रकट हुए। 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु से रामचरित श्रवण किया। 40 वर्ष तक श्रवण और अध्ययन चलता रहा। फिर अनेक वर्षों के मनन के उपरांत 78 वर्ष की अवस्था में संवत 1631 में तुलसी ने रामचरित मानस का निर्माण किया। संवत 1680 आपका राम धाम प्रवेश का समय है। भक्तमाल की टीका पर भक्ति सुधा स्वाद तिलक तृतीय संस्करण 1937 पृष्ठ 762 न की प्रे लखनऊ। हाथरसवासी तुलसीदास अपनी खट रामायण में अपने को पूर्व जन्म में रामचरित मानस का प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास मानकर उनका जन्म संवत 1589 भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार लिखते हैं। अधिकांश विद्वान इस तिथि को मान्यता देते हैं और गणना से भी यह तिथि शुद्ध उतरती है। डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज स्वरचित तुलसीदास का घर बार ग्रंथ में तारीख और तुलसीदास का नहीं उनकी माता होलसी का जन्म स्थान मानते हैं। आपकी सम्मति में तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो है। कतिपय विद्वान राजापुर को इनके जन्म स्थान होने का महत्व प्रदान करते हैं। पर श्री वी वी हंटर क्रिस्ट इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 11 द्वितीय संस्करण 1886 पृष्ठ 385 और 386 के अनुसार राजापुर तुलसीदास जी का बताया हुआ है। बांदा जिले का गजेटियर भी इस बात का समर्थन करता है। इसमें तुलसीदास का सोरों का निवासी भी लिखा गया है। कुछ विद्वान विरक्तावस्था में तुलसीदास का राजापुर में आना स्वीकार करते हैं। माता प्रसाद गुप्त तुलसीदास पृष्ठ 128 द्वितीय संस्करण 1946। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अचेत बाल्यावस्था में शुकर क्षेत्रवासी अपने गुरु से रामायण की कथा सुनने का उल्लेख किया है। यह शुकर क्षेत्र सोरों के नाम से ब्रज प्रदेश में गंगा तट पर स्थित है। बाबा वेणी माधव दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरयू घाघरा के संगम पर जिला गोंडा में शुकर क्षेत्र की स्थिति लिखी है। पर वाराह पुराण के अनुसार शुकर क्षेत्र के निकट सरयू नहीं भागीरथी बहती थी। वाराह पुराण 137 भागीरथी गंगा ब्रज प्रदेश में स्थित सोरों के निकट ही इस समय भी बहती है। इस आधार पर सोरों ही प्रसिद्ध शुकर क्षेत्र प्रतीत होता है। सोरों शब्द की व्युत्पत्ति शुकर ग्राम से है, यथा शुकर ग्राम सुअर गाँव सोराव सोरों। गोस्वामी जी का विवाह बद्री निवासी पंडित दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, जिससे तारक नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु स्वर्पायु पाकर ही स्वर्ग प्रयाण कर गया। पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य के अनुसार अष्टछापी नंददास गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे। नंददास शुक्ल आस्पद के सनौड़िया अर्थात सनाट्य ब्राह्मण थे। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के प्रारंभिक श्लोकों में महादेव शंकर की गुरु रूप में वंदना की है, परंतु जिस गुरु के मुख से उन्होंने राम गाथा सुनी वह महादेव शंकर नहीं कोई मानव देहधारी गुरु है। प्रारंभिक श्लोकों के अंत में उन्होंने इस गुरु के पद पद्मों की भी वंदना की है और उसे कृपा सिंधु नर रूप हरि लिखा है। इन शब्दों से कुछ विद्वान नरहरि को उनका गुरु मानते हैं। नरहरि कौन से यह भी विवाद का विषय है। कुछ विद्वान नरहरि से नरहरियानंद अर्थ लेते हैं और उनका संबंध स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा से जोड़ते हैं। अन्य विद्वान नरहरि से नृसिंह का अर्थ ग्रहण करते हैं। नृसिंह या नरसिंह सोरों में एक प्रसिद्ध महात्मा और विद्वान हुए हैं, जिनका बनवाया हुआ मंदिर सोरों में आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्यमान है। मंदिर के सामने गली के कोने पर एक कुआं है, जिसे नरसिंह का कुआं कहते हैं। सोरों में तुलसी का घर गलकटियों अर्थात कसाईयों के मोहल्ले में पड़ता है। कर्ण मूल रोग को दूर करने के लिए उस घर की मिट्टी लेने लोग अभी आते रहते हैं। रघुवर दास रचित तुलसी चरित के अनुसार तुलसीदास राजापुर निवासी मुरारी मिश्र के पुत्र थे। इनका मूल नाम तुलाराम था। तुलाराम के 3 विवाह हुए थे। अंतिम पत्नी का नाम बुद्धिमती था, जो कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री थी। विद्वानों ने इस चरित की प्रामाणिकता में संदेह किया है। तुलसी साहिब के घट रामायण के अनुसार भी गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर ही थी। वेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी, निधन संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार सुबह स्थान कालिंदी के निकट माना गया है। इसमें उल्लिखित मीराबाई और केशव से संबंधित संबद्ध इतिहास से प्रमाणित नहीं होते। पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी ने अंतरंग परीक्षा द्वारा इसे अप्रामाणिक घोषित किया है। राजापुर को जन्म स्थान मानने के विपक्ष में आपकी यह युक्ति भी विचारणीय है कि यदि राजापुर में तुलसीदास उत्पन्न हुए तो वे अपनी अचेत बाल्यावस्था में समीपवर्ती प्रयाग को छोड़कर जन्म स्थान से बहुत दूर घाघरा और सरयू के संगम पर स्थित शुकर या वाराह क्षेत्र में राम कथा सुनने के लिए कैसे पहुँचे। त्रिपाठी जी इसी हेतु राजापुर को नहीं व्यस्त प्रदेश में गंगा तट पर स्थित शुकर क्षेत्र सोरो को तुलसीदास का जन्म स्थान मानने के पक्ष में है। इस संबंध में उन्होंने तुलसी की कृतियों से कुछ ऐसे शब्द उदाहरण स्वरूप उद्धृत किए हैं जिनका प्रयोग ब्रज में ही होता है, अवध या राजापुर में नहीं। दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने ठेठ अवधि के शब्दों की ही ओर नहीं सर्वार क्षेत्र में प्रचलित प्रथाओं की ओर भी संकेत किया है और गोस्वामी जी का सरयू पारे में ब्राह्मण होना सिद्ध किया है। त्रिपाठी जी की सम्मति में ऐसे शब्दों का प्रयोग और प्रथाओं का उल्लेख तुलसी के अवध प्रदेश में अधिक दिनों तक निवास करने तथा देश और समाज के अनुकूल प्रथाओं का वर्णन करने के कारण हो गया है। तुलसीदास ने सोरो का परित्याग युवावस्था में किया, इसके पश्चात उनका जीवन प्राय चित्रकूट अयोध्या और काशी में ही व्यतीत हुआ। एक बार वे नंददास से मिलने के लिए काशी से ब्रज की ओर अवश्य गए थे। कतिपय विद्वानों की सम्मति में इसी यात्रा में उन्होंने वृंदावन में नाभादास जी से भी भेंट की थी। काशी में श्री टोडरमल और श्री मधुसूदन सरस्वती के साथ उनकी घनिष्ठ मैत्री थी। टोडरमल के वंशज अस्सी घाट पर अब तक रहते हैं और वे श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन तुलसी की निधन तिथि पर एक सीधा दिया करते हैं। श्री श्याम सुंदर दास और डॉक्टर भरतपाल कृत गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 184 द्वितीय संस्करण 1952 विक्रम। यह निधन तिथि संवत 1680 में शनिवार को पड़ी थी जो गणना द्वारा भी शुद्ध सिद्ध हुई है। जन्म तिथि अभी तक विवादास्पद है। अंत साक्ष्य तुलसी के ग्रंथों से उनके चरित्र पर जो प्रकाश पड़ता है उसे नीचे अंकित किया जाता है। वंश भली भारत भूमि भलो कुल जन्म समाज शरीर भलो लही कै कवितावली 33 उत्तर दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फलचारी को यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली विनय पत्रिका 135 जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी भयो परिताप पाप जननी जनक को कवितावली उत्तर 73 भरत खंड के अंतर्गत गंगा के किनारे सुंदर भिक्षुक कुल में तुलसीदास का जन्म हुआ। समाज और शरीर दोनों ही ने अच्छे मिले थे। इनके जन्म के समय बधावे का वादन सुनकर इनके माता पिता को क्लेश हुआ था। बाल्यावस्था मातु पिता जग जाई तज्यो विदिहु न लिखी कछु भाल फलाई कवितावली उत्तरार्ध 57 तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हो विनय पत्रिका 275 सारस के साथिन तज्यो तिजरा कौसो टोटक औचट उलटी न हेरव विनय पत्रिका 272 बार ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन जानन हो चारी फल चारी ही जनक को कवितावली 73 उत्तर जाति के सुजाति के कुजाति के पिटागी बस खाए थूक सबके विदित बात दुनित कवितावली 72 उत्तर जननी जनक सज्यो जनमी करम बिनो विधि हूँ सृज्यो और बेरे विनय पत्रिका 227 हा हा करी दीनता कही द्वार द्वार वार वार परी न छार मुह बायो असन वसन बिन बावरो जह तह उठी खायो विनय पत्रिका 276 दुखित देखी संतन कहो सोचे जनी मन माही विनय पत्रिका 275 नीचो गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोली विनय पत्रिका 76 तुलसीदास के जन्म के उपरांत ही माता पिता इन्हें छोड़कर स्वर्गवास कर गए। अन्य स्वार्थ के साथियों ने भी इन्हें जिजारी के टोटके के समान छोड़ दिया और फिर लौटकर इनकी ओर देखा तक नहीं। बाल्यावस्था से ही तुलसीदास अशन और वसन की चिंता में द्वार द्वार भटकते रहे तथा जाति सुजाति और कुजाति के सूंख खाते रहे। उस समय चार चने भी मिल जाते तो ये उन्हें चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के समान समझते थे। इनकी दुखदायिनी दशा को देखकर संतों ने आश्वासन दिया और गुरु ने पीठ पर हाथ रखकर इन्हें अपना लिया। नाम राम को गुलाम नाम राम बोला राखियो राम विनय पत्रिका 76 राम बोला नाम हो गुलाम राम साही को कवितावली उत्तर 100 राम नाम लेकर भिक्षा मांगने के कारण संभवतः बालकाल में लोग ने राम बोला कहकर संबोधित करते थे। कवितावली उत्तरकांड छंद संख्या 13 में इन्होंने अपना नाम तुलसी भी लिखा है। गुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम श्लोक 3 वाल्मीकि बालकांड रामचरितमानस वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। परी, सोरठा पांच, बालकांड, रामचरित मानस। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु सुकर खेत, समझी नहीं तस बालपन अब अति रहे अचेत। उनचास, बालकांड, रामचरित मानस। तदपि कही गुरु बारही बारा, समझी परी कछुमति अनुसारा। 51 बालकांड, रामचरित मानस। गुरु कयो राम भजन नीको, मोही लगत राज डगरो सो। बिना पत्रिका 173। नर रूप हरि शब्दों से कुछ विद्वानों ने तुलसी के गुरु का नाम नरसिंह था, नरसिंह, और कुछ विद्वानों ने नर हरिदास या नर हरियानंद माना है। तुलसी ने गुरु की शंकर रूप में वंदना की है। गुरु मुख से इन्होंने शुक्र क्षेत्र में राम कथा सुनी थी। बाल्यावस्था के कारण उस समय वह उसे हृदयंगम नहीं कर सके थे, फिर भी गुरु इन्हें बार बार वही कथा सुनाई जिसे तुलसी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ ग्रहण कर सके। गुरु ने इन्हें राम भजन की भी दीक्षा दी। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने एक खंड में लिखा है, बालक पिलो की बली बारे ते आपनो कियो। 21 तथा सूकनी को घर घर दौलत कंगाल बोली बाल देव कृपाल नत बाल पाली पोसो है। 29 हे हनुमान, आपने बाल्यावस्था से ही मुझे अपनाया है। मैं जब रोटी के टुकड़ों के लिए घर घर घूम रहा था तब आपने ही मेरा पालन पोषण किया। ये शब्द सोरों के नृसिंह महाराज के हनुमान मंदिर की ओर भी संकेत कर सकते हैं, जहाँ तुलसीदास को आश्रम मिला और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। प्रतिष्ठा, घर घर मांगे टूंक पुनी भूपति पूजे पाए, जो तुलसी सब राम बिनु सो अब राम सहाय। दोहावली 109। राम नाम को प्रभाव पाऊं मनमा प्रताप, तुलसी से जगमानियत महा मुनि सो। कवितावली उत्तर 72। घर घर भिक्षा मांगने वाले तुलसीदास राम नाम के प्रभाव से महिमान्वित हुए। संसार ने उन्हें महामुनि समझा और राजाओं ने उनके पैर पूजे। तुलसी के प्रताप के कारण उनके शत्रु भी उत्पन्न हुए। पाप प्रतिष्ठा बढ़ी परी दाते बाढ़ी रारी। दोहा बली 494। जो उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को सहन न करके उत्पात मचाने पर उतारू हो गए और जातिगत अपमान भी करने लगे, यह सब काशी में हुआ। कवितावली उत्तरकांड के छंद संख्या 106, 107 और 108 उसी समय लिखे गए होंगे जिनमें तुलसीदास ने शत्रु पक्ष की ओर से अपनी विरक्ति प्रकट की है। यह भी असंभव नहीं है कि किसी शत्रु के घात से ही वे अंतिम दिनों में पीड़ित हुए हों। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की। हनुमान बाहु 43। लौकिक जीवन, बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खास टूंक टाक हो, परयो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरह की तराक हो। तुलसी गुसाई भयो भौंडे दिन भूली गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। बाहुक 40। जो तुलसी बाल काल में राम नाम लेकर भिक्षावृत्ति द्वारा उदर भरण करते थे, वे ही लोक रीति में पढ़कर किसी मठ के महंत या गोसाई बने और राम से नाता तोड़ बैठे। निम्नांकित दोहा उनके वैवाहिक जीवन की ओर भी इंगित कर रहा है। खरिया खरी कपूर संग उचित न पिय पिय त्याग, क्या खरिया मोही मेली गय अचल करहु अनुराग। दोहावली 255। तीर्थ निवास, घर छोड़कर तुलसीदास विरक्त दशा में चित्रकूट अयोध्या प्रयाग काशी आदि स्थानों में जाते रहे। प्रयाग तो नहीं पर अन्य तीन स्थानों में उन्होंने बहुत दिनों तक निवास किया। अयोध्या में रहकर उन्होंने रामचरितमानस और काशी में रहकर विनय पत्रिका का निर्माण किया। अन्य ग्रंथों का प्रणयन भी इन्हीं स्थानों में हुआ होगा। हनुमान बाहु तथा कवितावली के अंतिम छंद जिनमें महामारी तथा बाहु पीड़ा का वर्णन है काशी में लिखे गए। तुलसी का अंतिम समय काशी में विकट विपत्तियों के बीच व्यतीत हुआ और वहीं अस्सी घाट पर उनकी मृत्यु हुई। काशी में प्रहलाद घाट पर रहने वाले ज्योतिषी गंगाराम और अस्सी घाट पर रहने वाले टोडर जमींदार उनके घनिष्ठ मित्र थे। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने उनके वंशजों में जायदाद का बंटवारा करा दिया था और जो पंचनामा लिखा गया था वह आज तक काशी राष्ट्रीय संग्रह में सुरक्षित है। इस पंचनामे के ऊपर की कुछ पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी गयी समझी जाती है। काशी में महामारी, कवितावली उत्तरकांड छंद संख्या 173 से 176 तक तथा 183 में कवि ने महामारी का वर्णन किया है। जैसे वर्षा ऋतु में प्रथम बाढ़ के मांजा को पीकर जलचर व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार काशी के नर नारी इस महामारी के कारण जल थल सभी स्थानों पर मृत्यु का भयावह दृश्य देखकर तड़प रहे थे। उनकी आर्त पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। तुलसी ने इसे दैवी प्रकोप समझा। काहू देवतन मिली मोटी मूठ मार दी। कवितावली उत्तरकांड 183। महामारी वर्णन से पूर्व छंद संख्या 170 में रुद्र बीसी विश्वनाथ की विषाद बढ़ो वाराणसी, पूछिए न ऐसी गति शंकर शहर की। वही 170 और इसके पश्चात छंद संख्या 170 में तीन के सनेश्चर का उल्लेख आया है। एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तामे कोड़ में की खाजु की सनीचरी है मीन की वही 170। महामारी आगरे में जहांगीर के राज्यकाल में संवत 1673 में प्रकट हुई। काशी में इसका समय 1669 से 1671 विक्रमीय तक जान पड़ता है जब मीन राशि पर सनेश्चर था। रुद्रविधि का भी यही समय था जो गणना से संवत 1655 से 1675 तक रहा। पीड़ा और मृत्यु दोहावली के दोहा संख्या 234 से 236 तथा हनुमान बाहु के छंद संख्या 34 से 37 तक तुलसी की विषम बाहु पीड़ा का वर्णन उपलब्ध होता है। यह पीड़ा दक्षिण बाहु से प्रारंभ होकर समस्त शरीर में व्याप्त हो गई। पाए पीर पेट पीर बाहु पीर मुंह पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है हनुमान बाहु 38। इस पीड़ा ने तुलसी को विचलित कर दिया। उन्होंने औषधोपचार किया, यंत्र मंत्र टोटकादि भी किए, देवताओं से प्रार्थना की, पर इस गाढ़े समय में किसी ने भी आड़ न दी, कोई भी सहायक सिद्ध न हुआ। यह असहनीय पीड़ा उनके किसी पाप का परिणाम थी या कृताप जन्य थी अथवा किसी के शाप के कारण थी, इसे तुलसी समझ न सके। हनुमान बाहु 30। अंत में उन्होंने इसे अपने कर्म का ही विपाक समझा और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की उक्ति द्वारा हो हूँ रही मौ नहीं बयो सो जानी लुनिये कहते हुए वे चुप हो गए। हनुमान बाहु 44। एक क्षण में उन्होंने पीड़ा का कारण अपनी प्रतिष्ठा और उससे भ्रांत होकर मन वचन काया से प्रभु भजन को विस्तृत कर देना भी माना है। नीच यही बीच पति पाई भरुआई गो बिहाई प्रभु भजन वचन मन काय को ताते तनु देखी अतु घोर पर दोर मिस फूटी फूटी निकसत लौन राम राय को। हनुमान बाहु 41। जीवन के अंतिम दिनों में शारीरिक पीड़ा ने तुलसी पर दो बार आक्रमण किया। पहली बार तो वे प्रभु कृपा से बच गए परंतु दूसरी बार यह उनके प्राण लेकर भी शांत हुई। कवितावली का निम्नांकित सवैया तुलसी के अंतिम समय के कुछ पूर्व का लिखा हुआ कहा जाता है। कुमकुम रंग सुअंग जितो मुख चंद सो चंदन होड़ परी है बोलत बोल समृद्धि चुए अवलोकत शोच विषाद हरी है गौरी की गंग विहंगिनी बेसकी मंजूर मूर्ति मोद भरी है देखू सपेम पयान समय सब सोच विमोचन क्षेम करी है। कवितावली उत्तरकांड 180। निम्नांकित दोहा उनके मृत्यु के समय का है। राम नाम जस बरनी कै भयउ चहत अब मौन तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। हनुमान बाहु कविता संख्या 35 के अनुसार बाहु पीड़ा के समय दिन में घनघोर घटाएं छाई रहती थी, अतः तुलसी की मृत्यु श्रावण के मास में हुई यह सत्य है। रचनाएं तुलसीदास के नाम से लिखे हुए ग्रंथों की संख्या लगभग 30 है परंतु उनमें से निम्नांकित 12 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। रामलला नहचू वैराग्य संदीपनी रामाज्ञा प्रश्न जानकी मंगल रामचरितमानस पार्वती मंगल गीतावली विनय पत्रिका कृष्ण गीतावली वरवै रामायण दोहावली और कवितावली जिसमें हनुमान बाहु भी सम्मिलित है। रामलला नाचू की अनेक ऐतिहासिक भूलों तथा उसके प्रबंध दोषों और श्रृंगार पूर्ण वर्णनों की ओर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संकेत किया है और उसे कवि की बालकाल की चेष्टाओं का परिणाम माना है। तुलसीदास द्वितीय संस्करण पृष्ठ 218 और 219। इसमें केवल 20 छंद हैं जो विवाह के अवसर पर अवध में स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। वैराग्य संदीपनी में दोहे चौपाइयां और सोरठे मिलाकर कुल 63 छंद हैं जिनमें वैराग्य परक उक्तियां हैं। नहचू में नारी श्रृंगार की ओर जितना झुकाव है इसमें उतनी ही विरक्ति है। इसका उद्देश्य कवि के ही शब्दों में राग द्वेष की अग्नि तथा काम क्रोध की वासना का समन और हृदय में शांति का निवास समझना चाहिए। रामाज्ञा प्रश्न 7 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। यह ग्रंथ उनके अंतर साक्ष्य के ही आधार पर संवत 1621 में बना था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रहलाद घाट पर रहने वाले गंगाराम ज्योतिषी के लिए इस ग्रंथ की रचना केवल 6 घंटों में की थी। यह ग्रंथ फलित ज्योतिष तथा शकुन निकालने से संबंध रखता है। इसके प्रथम सर्ग के 49वें दोहे में गंगाराम का नाम आया है। जानकी मंगल राम और सीता के विवाह से संबंध रखता है। इसमें कुल 216 छंद हैं। कथानक में रामाज्ञा प्रश्न की भांति परशुराम धनुर्भंग के समय नहीं बारात के लौटने पर मिलते हैं जो वाल्मीकि रामायण के समान हैं। जानकी मंगल में फुलवारी का प्रसंग नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा अलंकार और भाव रामचरितमानस से बहुत कुछ साम्य रखते हैं। पार्वती मंगल की रचना उसके अंतर साक्ष्य के आधार पर जय नामक संवत में हुई थी। यह संवत 1643 विक्रम में पड़ता है। उस समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन बृहस्पति और नक्षत्र अश्विनी था। इसमें कुल 64 छंद हैं जिनमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पर्व रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इस समय इसमें केवल 69 पर्व छंद हैं। अन्य ग्रंथों की भांति राम कथा ही इसका विषय है। इस ग्रंथ में सद्गुण असद्गुण मिलित उन्मिलित प्रतीक सूक्ष्म आदि अलंकारों के सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। दोहावली में इस समय 573 दोहे संग्रहित हैं, जिसके 75 दोहे रामचरितमानस में, 35 दोहे रामाप्या प्रश्न में और 7 दोहे वैराग्य संदीपनी में भी पाए जाते हैं। इसके अनेक दोहे तुलसी सत्सई में भी विद्यमान हैं, पर सत्सई हमारी सम्मति में तुलसी का प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। परंपरा के अनुसार 6 बड़े और 6 छोटे मिलाकर कुल 12 ग्रंथ तुलसीदास के लिखे हुए हैं। सत्सई इन ग्रंथों के अंतर्गत नहीं आती। पंडित सुधाकर द्विवेदी का मत भी यही था। कवितावली कवि के समय समय पर लिखे हुए छंदों का संग्रह है, जिसमें सवैया और घनाक्षरी छंदों की प्रधानता है। कुछ 56 छंद भी हैं। कवि की व्यक्तिगत जीवनी से संबंध रखने वाले छंद ऐसी ग्रंथ में अधिकतर पाए गए हैं, जिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। कवितावली का संग्रह 7 कांडों में विभक्त है। हनुमान बाहुक, जिसमें तुलसी की बाहुपीड़ा का वर्णन है, कवितावली का ही अंश है और उसी के साथ प्रकाशित भी है। हनुमान बाहुक के 44 छंदों के साथ कवितावली के समस्त छंदों की संख्या 369 है। अरण्य और किष्किंधा कांडों की कथा केवल एक एक छंद में है और अपूर्ण है। लंका कांड में लंका दहन का वर्णन अति ओजस्वी मुहावरेदार और अलंकृत शैली में किया गया है। उत्तरकांड के छंद प्राय विनय भक्ति परक हैं, पर उनमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक दशा का भी चित्रण है। रुद्र बीसी मीन के शनैश्चर महामारी और तुलसी के अंतिम शारीरिक पीड़ा का भी वर्णन इसके अंतिम छंदों में है। कृष्ण गीतावली में केवल 61 पद हैं, जिनमें राधा कृष्ण तथा गोपियों की गाथा वर्णित हुई है। ब्रज की प्राकृतिक सुषमा, ब्रज भाषा के क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग, कथागत एक रूपता एवं संबद्धता तथा वर्णन शैली की परिपक्वता इस ग्रंथ की विशेषताएं हैं। यह ग्रंथ निश्चित रूप से अष्टस्थापी कवियों की पद शैली के अनुकरण पर लिखा गया है। गीतावली पर भी इस पद शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। तुलसी ने अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों में रामगाथा लिखी है। गीतावली ब्रज भाषा में है, परंतु इसमें रामगाथा के केवल मर्म स्पर्शी अंशों का ही प्राचुर्य के साथ वर्णन किया गया है। कथा की एक रूपता अनेक स्थानों पर खंडित है, अनेक प्रसंग छोड़ भी दिए गए हैं, पर मार्मिक स्थलों का विस्तार के साथ वर्णन कवि की कला को अत्यंत निखरे हुए और परिमार्जित रूप में उपस्थित करता है। सूर के भाव प्रधान काव्य की भांति इसमें भी भाव को ही प्रधानता दी गई है। इसी वृत्तात्मकता के निर्वाह की ओर कवि की दृष्टि इसी हेतु नहीं गई। सूर सागर के वात्सल्य रस एवं बाल क्रीड़ाओं के विस्तृत भावपूर्ण वर्णन का प्रभाव भी गीतावली में दिखाई देता है। गीतावली का बाल कांड उसके अन्य सभी कांडों से बड़ा है। इसमें 108 पद हैं। समस्त कांडों के पदों की संख्या 328 है। किष्किंधा कांड में केवल 2 ही पद हैं। सीता वनवास तथा लव कुश उत्पत्ति की कथा उत्तर कांड में आती है, जो रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त रामगाथा का अनुपम काव्य ग्रंथ है, जो प्रमुख रूप से दोहा तथा चौपाई छंदों में लिखा गया है। इसका निर्माण कवि के ही शब्दों में संवत 1631 चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार को प्रारंभ हुआ था। बाल कांड 55 और उसकी समाप्ति जनश्रुति के अनुसार संवत 1633 में हुई। ऐसा बृहद ग्रंथ 2 वर्षों में बन गया होगा, इसे स्वीकार करने में बुद्धि हिचकिचाती है, पर यह असंभव भी नहीं है। रामचरितमानस एक सिद्ध काव्य है। उसके पारायण से मानव जीवन के विविध क्षेत्रों के ज्ञान के साथ भगवत चरणों में अविचल भक्ति निधि प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का प्रचार यो तो भारत वर्ष भर में है और अब इंग्लैंड तथा रूस में होता हुआ विश्वव्यापी रूप धारण कर रहा है, पर विशेष रूप से यह उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब राजस्थान तथा गुजरात के ग्राम ग्राम एवं गृह गृह की संपत्ति बना हुआ है। संस्कृत बंगला गुजराती उड़िया अंग्रेजी तथा रूसी भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। हिंदी टीकाएं भी अनेक हैं। रामचरितमानस की महत्ता अपने जन्मकाल से लेकर अब तक अक्षुण्ण रूप में बनी हुई है। रामचरितमानस की भाव संपत्ति आर्य जाति की सांस्कृतिक शेवधी है। तुलसी ने पुराण तथा निगमागम के जितने ग्रंथ पढ़े थे उन्हें ऐसा आत्मसात किया था कि उनके समस्त सत अंश रामचरितमानस में अवतरित होकर तुलसी के अपने बन गए हैं। इस एक ग्रंथ को पढ़ लेने से ही हम अपनी समस्त विकसित परंपराओं से परिचित हो जाते हैं। इसमें हमारा आचार विचार धार्मिक सामाजिक राजनैतिक एवं पारिवारिक विधि विधान ज्ञान कर्म एवं भक्ति के दार्शनिक अनुष्ठानिक एवं उपासना परक सिद्धांत तथा अब तक की हमारी संचित आर्ष पौराणिक तथा वैदुषी साहित्यिक श्री का अपरिमित भंडार ओतप्रोत है। इसने यवन काल में हमारी रक्षा की और भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन किया। हमने राम भक्ति विषय सामग्री का अधिकांश इसी से ग्रहण किया है। जैसे गीतावली का एक अंश पदावली रामायण के रूप में उपलब्ध हुआ है, उसी प्रकार विनय पत्रिका के कतिपय पदों के संग्रह रूप में राम गीतावली मिलती है। विनय पत्रिका में 289 पद हैं, इनमें से 171 पद राम गीतावली में हैं। विनय पत्रिका काव्य कला की दृष्टि से तुलसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जा सकता है। यह विशुद्ध रूप से भक्ति भाव भरित ग्रंथ है। रामचरितमानस की इतनी वृत्तात्मकता का इसमें एकांत अभाव है। इसके प्रारंभिक 61 पदों में संस्कृत शैली के स्तोत्र हैं, जिनमें गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती, बिंदु माधव, लक्ष्मण तथा शेष और हनुमान आदि की वंदना है। प्रयाग, काशी, गंगा, चित्रकूट आदि तीर्थों की स्तुति है और अंत में जगदम्बा सीता के चरणों में प्रार्थना है। इन स्तोत्रों के उपरांत आत्मनिवेदन तथा शरणागति से संबंध रखने वाले पद आते हैं, जिनमें कहीं संसार की असारता का वर्णन है, कहीं अपने दोषों का उद्घाटन है, कहीं मूढ़ मन को सन्मार्ग पर लाने का उपदेश है, कहीं वैराग्य, कहीं ज्ञान और कहीं भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा एवं महत्ता का उल्लेख है। अंतिम पद अतीव मार्मिक है, जिनमें तुलसी अपनी विनय पत्रिका भगवान राम के दरबार में भेज रहे हैं। उन्हें दरबारियों का विश्वास नहीं है, अतः राम के सामने अपने हृदय की समस्त भावना शक्ति को उड़ेलते हुए वे निवेदन करते हैं, विनय पत्रिका दीन को बापू आपू ही बाँचो, ये हेरी तुलसी लिखी सो सुभाए सही करी बहुरी पूछिए पाँचो। 277 तुलसी का कवि रूप भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से रामचरितमानस के अयोध्या कांड और विनय पत्रिका में ही पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुआ है। तुलसी अपने इस रूप में लोक धर्म के प्रतिष्ठाता हैं। कतिपय विद्वान उनके कवि रूप को नहीं भक्त रूप को अधिक श्रेय देते हैं। उनकी सम्मति में तुलसी के कवि को तुलसी के भक्त ने दबा दिया है। मुंडे मटर भिन्ना की लोकोक्ति के आधार पर इस प्रकार की विभिन्न सम्मतियाँ सदैव बनी रहेंगी, पर हमारी समझ में कवि का आत्यंतिक रूप न भक्ति को दबाता है और न भक्ति कविता को। दोनों एक दूसरे को चैतन्य प्रदान करते हुए सहोदर बंधु की भांति एकत्र भी रह सकते हैं। तुलसी के ग्रंथ पद पद पर इस मान्य प्रस्ताव के लिए साक्ष्य उपस्थित करते हैं। यह सत्य है कि तुलसी की भक्ति भावना ने उनके अन्य रूपों को जगमगा दिया है। यदि वे भक्त न होकर कोरे कवि होते तो उन्हें वह गौरव कदापि प्राप्त न होता जो आज प्राप्त है। ऊपर तुलसी के जिन ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया गया है, उसे सिद्ध होता है कि तुलसी की राम भक्ति का निरूपण करने के लिए विशेष रूप से रामचरितमानस और विनय पत्रिका का ही सहाय लेना चाहिए। कवितावली का उत्तरकांड और दोहावली के दोहे भी इस दिशा में उपयोगी हैं। कृष्ण गीतावली सूर की भांति प्रमुख रूप से हरि लीला गान से संबंध रखती है। गोपिकाओं की भक्ति को हृदयंगम करने के लिए इस ग्रंथ का भी महत्व है, परंतु हमें तुलसी की राम भक्ति पर विशेष रूप से लिखना है, अतः आगे हम कृष्ण गीतावली के अतिरिक्त अन्य उपर्युक्त 4 ग्रंथों के आधार पर ही उस भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। पौराणिकता इस युग की जिस पौराणिकता प्रधान विशिष्टता की ओर हम पहले संकेत कर चुके हैं, वह सूर और तुलसी दोनों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम अवतार वाद से संबद्ध होकर विद्वान ही नहीं सामान्य मानवों तक की भाव भूमि में स्थान पा रहे थे। आध्यात्मिक भावों को जन मन ग्राहिणी कथा वार्ता प्रधान पौराणिक शैली में अभिव्यक्त करने का प्रचार हो रहा था। भगवान नाम कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण और गान, अरूप का रूप द्वारा भावन, सर्वव्याप्त की किसी विग्रह द्वारा प्रतीति, सूक्ष्म को स्थूल प्रतीकों द्वारा प्रकट करने की प्रवृत्ति हृदय ग्राह्य बन रही थी। इस पद्धति का मूल वैष्णव संप्रदाय की संहिताओं में उपलब्ध होता है, जिनका उद्भव गुप्त काल में हुआ था। ऐतिहासिक काल क्रम का अनुसरण करें तो यह पद्धति और भी पहले देखी जा सकती है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में इसका उल्लेख हो चुका है। समय समय यह भारत व्यापी बन गई और हिंदी के भक्ति काल तक आते आते अपने पूर्ण वैभव के साथ चतुर्दिक प्रस्तुत हो गई। कबीर और जैसी जैसे निराकार पर ब्रह्म के उपासक तक इस पद्धति से प्रभावित हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के कथनानुसार शंकर और राम सरस्वती ने असामी भाषा में, चंडीदास तथा चैतन्य के भक्तों ने बंगला में, जगन्नाथ दास बलराम आदि ने उड़िया में, पोतना मात्य ने तेलुगु में, कुमार व्यास और विठल नाथ ने कन्नड़ में, तुकाराम ने मराठी में, मालण, भीष्म और केशव हृदय राम ने गुजराती में अपने काव्य द्वारा इसी पद्धति का प्रचार किया। ब्रज भाषा तो इस पद्धति का उन दिनों प्रचार केंद्र ही बनी हुई थी। राम और कृष्ण भक्ति रस तंत्र के मान्य प्रतीक थे। राजस्थान की मीरा और पंजाब के गुरु नानक देव भी भक्ति के क्षेत्र में सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। सूर ने अपनी प्राथमिक ब्रज भाषा रचनाओं में कबीर की भांति प्रभु के सभी नामों को अपनाया था, परंतु बाद में वे कृष्ण लीला गायन में ही तल्लीन हो गए। भागवत के आधार पर सूर सागर के नवम स्कंध में उन्होंने राम गाथा का भी मनोरम चित्रण किया है, पर जो विशालता दशम स्कंध की कृष्ण लीला में है वह वहाँ कहाँ। धामों में भी उन्होंने वृंदावन तथा गोकुल का ही विशेष रूप से उल्लेख किया है और उन्हें वैकुंठ से ऊपर स्थान दिया है। गोस्वामी तुलसीदास एकांत रूप से राम भक्त थे। राम गाथा को उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्व, पद आदि अनेक शैलियों का परिधान देकर सुशोभित किया। राम नाम के प्रचार में तुलसी के महत्व को सर्वोपरि स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्ण गीतावली द्वारा कृष्ण लीला का गायन करके उन्होंने कृष्ण भक्ति की ओर भी अपनी दृष्टि दी है, पर वह आनुषंगिक है। उनके माता पिता गुरु सब कुछ राम ही हैं। धामों में उन्होंने अयोध्या, साकेत, वैकुंठ, क्षीर सागर आदि का नाम लिया है। पौराणिक कथाएं तुलसी की रचनाओं में भरी पड़ी हैं। ये कथाएं किसी न किसी रूप में भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से निर्मित हुई थी और उसी रूप में तुलसी ने इनका प्रयोग किया है। गज, गणिका, अजामिल, ध्रुव, प्रहलाद आदि की कथाएं इसी प्रकार की हैं। काक, भुशुंडी, जटायु, गौतम, अहिल्या, नारद, सती, पार्वती, वाल्मीकि, द्रौपदी, शरभंग, सुतीक्ष्ण, बाली आदि के प्रसंगों में भगवान के गुण, लीला महात्म्य, शक्ति धाम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। तारक, जलंधर, चंड मुंड, महिष, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों की कथाओं में आसुरी शक्ति के पराभव तथा दैवी शक्ति के उन्नयन का आदर्श निहित है। इन कथाओं द्वारा भी प्रकारांतर से भक्ति की महत्ता पर ही प्रकाश पड़ता है। विनय पत्रिका पद 15, 57, 99 और 206 पर भक्ति के साथ साथ कहीं कहीं ये कथाएं पौराणिकों के छल विन्यास की भी सूचना देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दिग्पाल, सूर्य आदि का ब्राह्मण वेश में राम के विवाह कौतुक को देखना, महादेव का गुप्त रूप से राम जन्मोत्सव देखने जाना, जलंधर दैत्य की पत्नी का पातिव्रत धर्म भंग करना आदि कथाएं अस्वाभाविक होने के साथ अनौचित्य की सीमा में भी आ जाती हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा 70, 150 और 321। जलंधर तो क्या दैत्यों का दैत्य या विराट प्रपंच भी एक दिन भस्मीभूत होगा, फिर उसके वध के लिए एक पतिव्रता स्त्री के धर्म को नष्ट करने की क्या आवश्यकता है और वह भी किनके द्वारा। कथा गढ़नी ही थी तो वहाँ विष्णु को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जलंधर की पत्नी के सिद्ध को दूसरी दिशा में मोड़ देने से भी काम चल सकता था। रही देवों की बात, उनके लिए तो उन्हें मानव वेश धारण करने के लिए क्यों बाध्य किया गया। वे तो सूक्ष्म शरीर के साथ यथाभिलषित स्थानों में संचरणशील माने जाते हैं, पर पौराणिकों को तो सब कुछ स्थूल रूप में ही अभिव्यक्त करना था और वैसा करने में औचित्य का अतिक्रमण भी हो जाए तो उन्हें चिंता नहीं थी। नाम तुलसी ने भगवान के नामों में राम, ब्रह्म, सच्चिदानंद, पुरुष, परमात्मा, रघुकुल मणि, रघुवीर, रघुपति, रघुराज, कौशलपति, भगवान, इंदिरापति, इंदिरा रमन, रमा रमन, रमेश, रमानाथ, रमा निवास, सीतावर, श्री रमन, श्रीपति, अवधेश, सुरेश, त्रिभुवन धनी, श्री रंग, हरि, वासुदेव, प्रभुनाथ, ईश्वर, उरुगाय, अनंत, विष्णु, जिष्णु, माधव, बिंदु माधव, केशव, नंद कुमार, गोविंद, जानकी नाथ, जानकी जीवन का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया है। ओंकार नाम तुलसी ने मानस के उत्तर कांड के शिव स्तुति 174 में एक बार लिया है, परंतु उन्होंने सब नामों में राम नाम को ही प्रधानता दी है। प्रभु के नाम अनेक हैं, इसे वे स्वीकार करते हैं, पर उनकी रुचि राम नाम की ओर सर्वाधिक है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण वधिका, राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। रामचरितमानस अरण्य कांड 74। पूर्णिमा की रात्रि यदि भक्ति है तो राम का नाम चंद्रमा है और अन्य नाम नक्षत्रों के समान है। इस कथन से तुलसी के मत में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। चंद्र रजनी के तम को निगल जाता है तो भगवान का राम नाम समस्त पापों को विध्वंस कर देता है। अन्य व्यक्ति भगवान के किसी भी नाम का आश्रय अपनी रुचि के अनुकूल ले सकते हैं, पर तुलसी का एकमात्र आश्रय राम है। भरोसो जाही दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कल्प तरु, करी कल्याण करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत तो सब भांति खरो, मोही तो सावन के अंदर ही जो सूझत रंग हरो। विनय पत्रिका 226। वैदिक मर्यादा के अनुकूल ज्ञान, कर्म, उपासना आदि सब विधान सच्चे हैं, पर तुलसी कहते हैं कि जैसे श्रावण मास में अंधे हुए व्यक्ति को सब रंग हरे ही हरे जान पड़ते हैं, उसी प्रकार मुझे भी राम ही राम सर्वत्र समस्त अवस्थाओं में दिखाई देता है। राम नाम ही मेरी माता है, पिता है तथा सुजन, स्नेही, गुरु, स्वामी, सखा, सुहृद, धन आदि सब कुछ है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है, सुजन स्नेही गुरु साहब सखा, सुहृद राम नाम प्रेम पन अविचल वितु है। विनय पत्रिका 254। तुलसीदास कासों कहे, तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मातु पिते हो, मीना पत्रिका 270। राम नाम हनुमान की भांति तुलसी के रोम रोम में बसा हुआ था। रामचरितमानस के अध्येताओं का दावा है कि उसकी पंक्ति पंक्ति में र और म दोनों अक्षरों का किसी न किसी रूप में समावेश है। राम का नाम तुलसी ने सबसे अधिक बार लिया है। रामचरितमानस बालकांड 73, 74, 99, 104, 107, 140, 142, 143, 157, 184। किष्किंधा कांड 23, 24, 25, अरण्य कांड 6, 17, 36, लंका कांड 107, उत्तर कांड 32, 52, 53, 57, 104, 115, 127, 129, विनय पत्रिका 47, 53, 54, 55, 62, 87, 111, 116, 120, 114, 188, 217, 220, 236। रूप। तुलसी अपने राम को निर्गुण एवं सगुण निराकार तथा साकार दोनों रूप प्रदान करते हैं। अतः उनके राम एक ओर चिदानंद स्वरूप वाले हैं तो दूसरी ओर नर देहधारी भी। इन दोनों से पृथक उनका एक तीसरा रूप ही है जिसमें यह निखिल ब्रह्मांड ही उनका शरीर समझा गया है। तीनों ही रूपों में वे अनंत सौंदर्य संपन्न है। निम्नांकित अर्थालियों में इन तीनों रूपों का उल्लेख है। एक अनिह अरूप अनामा अति सच्चिदानंद परशामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धरी देह चरित कृत नाना। रामचरितमानस बाल कांड 23। समस्त साधनाओं में प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप ही माने गए हैं। यही उनका वास्तविक रूप है जिसे परम धाम में स्थित अरूप और अनाम भी कहा जाता है। इस रूप में वे वाणी मन और बुद्धि से अतर्क्य हैं। बाल कांड 148। हिरण्य गर्भ अथवा ज्येष्ठ ब्रह्म बनकर वे ही विश्व या ब्रह्मांड का विराट रूप धारण करते हैं। यह उनका प्रथम अवतार है। विश्व रूप के अतिरिक्त नरादि देहों में अवतरित होकर उनका तीसरा रूप प्रत्यक्ष होता है। उनका पर अथवा वास्तविक रूप अगम्य है। विश्व रूप की लीलाएं मुनियों को हृदय गम्य हो जाती हैं। नरादि रूपों की लीलाएं ऊपर से तो सबको प्रत्यक्ष होती हैं, परंतु उनके रहस्यों को अवगत करने वाले कुछ थोड़े से ही साधक होते हैं। वाल्मीकि सत्य का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख अपार नेति नेति नित निगम कह चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तन धरेउ संत सुर काजा करहु कहु जस प्राकृत राजा। अयोध्या कांड 127, 128। चिदानंदमय होने के कारण ही वे सहज प्रकाश स्वरूप हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना बाल कांड 140। अथर्ववेद 10, 7, 32, 33, 34 तथा 10, 8, 1 में प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है जिसमें पृथ्वी प्रभु का पैर है, अंतरिक्ष उदर है, द्यौ मूर्धा है, सूर्य चंद्र नेत्र है, अग्नि मुख है, वायु प्राणापान है, दिशाएं श्रोत्र है, भूत भविष्य तथा वर्तमान सबका वह अधिष्ठाता है। प्रभु के इसी विराट या ज्येष्ठ ब्रह्म के रूप का वर्णन करती हुई मंदोदरी रामचरितमानस में रावण से कहती है, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। लंका कांड 20। पद पाताल शीश अजथामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घनमाला जासु घ्रान अश्विनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबानी आनन अनल अम्बुपति जीहा अस्थि शैल सरिता नसजाला अहंकार शिव बुद्धि अज मन सति चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। लंका कांड 21। इस वर्णन में कुछ बातें अथर्ववेद के समान ही हैं, जैसे नयन दिवाकर श्रवण दिशा आनन अनल मारुत श्वास, परंतु कुछ बातें भिन्न हैं और वर्णन में अधिक अंगों को ब्रह्मांड पर खटाने का प्रयत्न है। बाह्य शारीरिक अवयवों के अतिरिक्त अंतःकरण चतुष्टय को भी विशाल रचना में स्थान दिया गया है जिसमें मन को चंद्रमा कहा गया है। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त 31:12 में भी चंद्रमा का संबंध मन से है। ऊपर शेर को अजधाम तथा अंतःकरण चतुष्टय की बुद्धि को अज कहा गया है। अज ब्रह्मा है और उसका धाम द्यौ है। यह भी मंत्र 13 के श्रीष्णो द्यौ के अनुकूल है। अहंकार को शेर तथा चित्त को महत्तत्व कहने का संकेत वेद में उपलब्ध नहीं होता। संभवतः वह किसी पौराणिक परंपरा के आधार पर है। सांख्य के अनुसार प्रकृति का प्रथम विकार महान या महत्व है, जिसे बुद्धि कहा जाता है। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली श्लोक 7 में महान को बुद्धि से भी पूर्व का विकार माना गया है। तुलसीदास ने महान को इसी अर्थ में चित्त से मिलाया है, क्योंकि वे बुद्धि को अज या ब्रह्मा का रूप देते हैं। संहार में अहंकार का बोध अधिक कार्य करता है, यह अहंकार रचना में महातत्व के पश्चात आता है। शिव का स्थान भी ब्रह्मा के पश्चात ही है। भगवान का यह विराट रूप रामचरित मानस उत्तरकांड 119-121 तक वर्णित हुआ है, जिसे काकभुशुंडी राम के मुख में प्रविष्ट होकर देखते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम चतुर्भुजधारी हैं। तुलसी ने इसी रूप में उनका उत्पन्न होना लिखा है। कौशल्या इस रूप को देखकर विस्मित हो गई थी। उसके कहने पर ही राम ने नर शिशु के समान लीला की थी। यह प्रसंग बालकांड दोहा 2-3 के पश्चात आने वाले छंदों में सन्निविष्ट है। सुतीक्ष्ण को भी राम ने पहले अपने चतुर्भुज रूप के ही दर्शन दिए थे। अरण्यकांड 20। विनय पत्रिका की निम्नांकित पंक्तियाँ राम के चतुर्भुज रूप को प्रकट करती हैं। भुजंग भोग भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनी आई 62। गदा कंज दर चारु चक्रधर नाग सुंड सम भुज धारी 63। राम अथवा विष्णु के अवतारों का उल्लेख भी तुलसी ने कई बार किया है। मत्स्य कच्छप वारा नृसिंह वामन परशुराम रूप में भगवान विष्णु ही प्रकट हुए थे। लंका कांड 136। विनय पत्रिका के पद 52 में वृष्णिवंशी राधा रमण कृष्ण शुद्ध बोध बुद्ध विष्णु यश पुत्र कल्की बलि को छलने वाले बटु रूपधारी वामन प्रहलाद रक्षक नृसिंह तथा अन्य अवतारों का वर्णन है। अवतार के कई कारण है, यथा देव रक्षा भक्त हित भूमि भार हरण तथा वर्णाश्रम मर्यादा की स्थापना। विनय पत्रिका 248 तथा मानस बालकांड 148। तुलसी को राम का धनुर्धर रूप अतीव प्रिय है, यथा करी कर सरिस सुभग भुज दंडा पति निशंग कर सर को दंडा बालकांड 175 तथा कर कमलन धनुषायक फेरत अयोध्या कांड 240। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान कर राम मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम अरण्यकांड 22। चतुर्भुज तथा नरावतारी दोनों रूपों में राम अनंत छवि के धाम हैं। इस लोचना विराम छवि को देखकर मुनि जन तृप्त नहीं होते थे। विग्रह में व्यक्त उनका सौंदर्य सबके आकर्षण का केंद्र था। इस सौंदर्य से संबंध रखने वाली कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं। देख की राम छवि नयन जुड़ाने अरण्यकांड 5। लोचन चातक जिन करी राखे रही दरस जलधर अभिलाखे अयोध्या कांड 129। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक तक रहे नयन पट रोकी चित वही सागर रूप अनुपा तृप्ति न मानही मनु सतरूपा बालकांड 176। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी पूछक गाज लोचन सजल उमा समेत पुरारी बालकांड 148। नर विग्रह में राम के सौंदर्य का चित्रण तुलसी ने कई स्थानों पर किया है। इनमें बालकांड 2174 से 175 तक का सौंदर्य चित्र अनुपम है। तुलसी को राम का यह सगुण साकार कोश लेश वाला रूप ही अधिक प्रिय था। लंका कांड के अंत में वे इंद्र के मुख से कहलाते हैं, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जे ही श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप लंका कांड 139। तुलसी इन्हीं उदार मुनि रंजन भव भार भंजन राम को अपना इष्ट मानते थे, यथा मुनि रंजन भंजन मही भार ही तुलसी दास के प्रभु ही उदार ही उत्तरकांड 53। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाही सदा मुनि तीरा बालकांड 74। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब उर अंतर्यामी बालकांड 143। गुण स्वरूप और गुणों का अन्योन्याश्रय संबंध है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। भगवान में जो अनंत सौंदर्य है वह उनके अनंत गुणों के कारण है। अपने परम धाम में वे अगुण अखंड अनंत अनादि अनूप अनीह अनामय अज अलख अविनाशी निराकार निर्मोह निरंजन नित्य तथा एकरस हैं। जीव की दृष्टि से वे न्यायी कर्म फलदाता नाना योनियों में घुमाने वाले ज्ञानी तथा गुण धाम और जड़ जगत की दृष्टि से प्रकाशक स्रष्टा पालक संहारक और सर्वव्यापक हैं। भक्त की दृष्टि से राम परम उदार दानी पतित पावन उत्थापितों के स्थापक और शरण शरण और करुणा के कोष हैं। उन जैसा बलवान तो यहाँ कोई भी नहीं है। शरण में आए हुए भक्त की वे सदैव रक्षा करते हैं और उनके पापों तथा विषय विकारों का विनाश करके उन्हें सदगति प्रदान करते हैं। तुलसी ने राम के संबंध में इन सभी गुणों का नाम लिया है। उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतन परमारथवादी नेति नेति जेहि वेद अरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा बालकांड 172। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूप ही वेदा अयोध्या कांड 94। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणराशी महिमा निगम नेति कही कही ज्योति स्थल एक रस अहई बालकांड 374। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी उत्तरकांड 104। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी बालकांड 144। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ बालकांड 140। सहज प्रकाश रूप भगवाना बालकांड 140। सर्व समर्थ राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकही न गाई सुंदरकांड 59। तृण ते कुलिस पुलिस तृण करई लंका कांड 53। सुनु गिरजा क्रोधानल जासु चारे भुवन चार दस आसु तक संग्राम जीत कर ताही सेवही सुर नर अग जग जाही लंका कांड 76। जो चेतन कहा जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समरस रघुनाथ ही बजही जीव ते धन्य उत्तरकांड 205। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि जो शीतल समन सकल भव त्रास उत्तरकांड 140। मसक विरंची विरंची मसक सम करई प्रभाव तुम्हारो विनय पत्रिका 94। सर्व रक्षक सर्व भक्षकाध्यक्ष कूटस्थ गुढ़ार्थी भक्तानुकूलम राम कीन चाहई सोई होई करय अन्यथा अस नहीं कोई बालकांड 156। धर्म धुरीन भानुकूल भानु राजा राम सबस भगवानु नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ विधि हरि हरु शशि रवि दिशिपाला माया जीव करम कुल काला अहिप भयिप जहां लगी प्रभुताई राम रजाई सीत सबही के अयोध्या कांड 255। सर्वज्ञ सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना अयोध्या कांड 258। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी सुंदर कांड 53। सत्य संध और मंगलकारी सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पितु मातु वचन अनुसारी खल दल दलन देव हितकारी अयोध्या कांड 255। पूर्ण काम पूरन काम राम अनुरागी अरण्य कांड 58 उत्तर कांड 216। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा सुंदर कांड 28। न्यायी शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु दे फल हृदय विचारी करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस्त कह सब कोई अयोध्या कांड 78। कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता अयोध्या कांड 283। काल रूप तिन कह मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता उत्तर कांड 64। माया ईश न आपु कह जान कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सिंह अरण्य कांड 27। जागतिक गुण जगत प्रकाश प्रकाशक रामू माया भीत ज्ञान गुण धामु सब कर परव प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई बालकांड 141। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना बालकांड 172। जहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा बालकांड 218। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण बालकांड 248। जाके बल विरंचि हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीता सुंदर कांड 22। उमा राम कर भिकुटी बिलासा होई विश्व पुनि पावे नासा लंका कांड 53। विश्वधृत विश्वहित अजित गोदित शिव विश्व पालन हरण विश्वकर्ता। विनय पत्रिका 61। हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जो दई। विनय पत्रिका 135। विश्व पोषण भरण विश्व कारण करण शरण तुलसीदास त्रास हंता। विनय पत्रिका 55। सिद्धि साधक साध्य वाच्य वाचक रूप मंत्र जापक जाप्य सृष्टि स्रष्टा। विनय पत्रिका 53। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल बिरचति माया। सुंदरकांड 22। उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना भीतर बसही न जान ही आना। अरण्य कांड 25। भक्त की दृष्टि से पतित पावन प्रणत पाल असरण सरण बाकुरे विरद विरुदय के ही केरे। विनय पत्रिका 210। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदार ही रंजन संत अखिल अघ गंजन भंजन विषय विकार ही। विनय पत्रिका 85। एक दानी सिरो मनी साचो जोई जाचो सोई जाचक ताबस फिरी बहु नाच न नाच्यो। विनय पत्रिका 163। ऐसे राम दीन हितकारी अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी। विनय पत्रिका 166। राई दशरथ के तू उत्पन्न थापनो साहिब सरपाल सबल न दूसरो। विनय पत्रिका 180। भक्त बछलता प्रभु के देखी उपजी मम उर प्रीति बिसेखी। उत्तर कांड 125। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। अरण्य कांड 19। शरणागत बच्छल भगवाना। सुंदर कांड 45। कोटि विप्र पद लाग ही जाहू आए शरण तजो तजहो नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघनास ही तबही। सुंदर कांड 46। प्रकृति और जीव देश काल से परिच्छिन्न तथा नाना रूप धारण करने वाले हैं, परंतु ब्रह्म देश और काल की सीमा से परे है। उसे इनकी अपेक्षा नहीं होती। वह इनसे पृथक और एक रस है। राम के एक रस रहने का वर्णन मानस के उत्तर कांड में काकभुशुंडी ने गरुड़ से किया है, जिसके अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु शिव मनु दिक्पाल अयोध्या सरयू दशरथ कौशल्या भरत आदि हैं, पर राम एक ही हैं। तुलसी के ही शब्दों में भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे आन। उत्तर कांड 121। बाल कांड 278 में भी पार्वती राम के अनेक विग्रहों में एक रूपता का दर्शन करती हैं। तुलसी अधिकांशतः अद्वैतवाद के समर्थक हैं। अकल अनीह अनाम अरूप अखंड अनुपम अनुभव गम्य मनो मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि एवं सुख राशि ब्रह्म का जीव तथा जगत के साथ संबंध वारी और बीचियों के संबंध की भांति है, ऐसा उन्होंने मानस के उत्तर कांड 286 में लिखा है। द्वैत बुद्धि उनकी सम्मति में अज्ञान का परिणाम है। जब तक जीव अज्ञान ग्रसित है तब तक वह ईश्वर के साथ एकी का अनुभव नहीं कर सकता। राम के पारमार्थिक गुणों में प्रकृति पारतत्व की ही विशिष्टता है। उनका जो रूप प्रकृति से संबद्ध होता है वह कूटस्थ नहीं कहा जा सकता। जो कूटस्थ है वह निरुपाधि भी है। प्रकृति की दृष्टि से इसी हेतु उसका अंत अथवा न इति कहकर वर्णन किया जाता है। न वह प्रकृति के समान जड़ है और न जीव के समान शुभाशुभ कर्मों का भोक्ता। वह सचित आनंद स्वरूप है तथा अविनाशी है। जगत की दृष्टि से वह नियामक सर्वव्यापक रचयिता आदि और जीवों की दृष्टि से वह न्यायी तथा कर्म फल दाता है। वह सब में व्यापक और सबसे पृथक भी है। वह सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सत्य संध और वैदिक मर्यादा का रक्षक है। उसकी आज्ञा को टालने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। वह स्वभाव से ही सबको वश में रखने वाला है। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब तुलसी अद्वैतवाद की प्रातिभाषिक सत्ता में भी कार्यान्वित या प्रतिफलित करने की धुन में प्रभु को व्यापक और व्याप्य वाचक और वाच्य जापक और जाप्य साधक और साध्य सृष्टि और सृष्टा कारण और करण कहते हैं, तब एक उलझन पैदा हो जाती है। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से राम के इस विविध रूप की संगति नहीं बैठ पाती। व्यापक व्याप्य से पृथक होना चाहिए, अन्यथा व्यापक शब्द की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। जो साधक है उससे साध्य भिन्न है। इसी प्रकार रचयिता और रचना की सामग्री एक नहीं हो सकती। जो कारण है वही करण भी है, तो कार्य कारण का संबंध क्या रहा। एक उलझन और भी है। तुलसी एक स्थान पर तो राम को करता धरता आदि कहते हैं, जिनको अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं होती और दूसरे स्थान पर उन्हें इन कार्यों से विरत दिखाकर उनके भ्रकुटी विलास मात्र से ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न कराकर उनसे सृष्टा पालक और संहारक का कार्य कराते हैं। कभी वे राम को विष्णु का अवतार विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी बालकांड 74, सीता को रमा और राम को हरि कहते हैं और कभी इसके विपरीत हरि अर्थात विष्णु और रमा को सीता तथा राम के स्वयंवर में दर्शक रूप में भेज देते हैं। हरि हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे बालकांड 350। यहाँ हरि अर्थात रमापति रमा के साथ स्वयंवर में जाते हैं और राम के रूप को देखकर मुग्ध होते हैं। इसके विपरीत राम को हरि तथा रमापति और सीता को रमा तुलसी ने अनेक स्थानों पर लिखा है, यथा राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खानी उत्तरखंड 25, अवधेश सुरेश रमेश विभो उत्तरखंड 32। क्या इन उक्तियों में कोई संगति है? ऐसे प्रश्न प्राय उठते रहते हैं पर उनके यथोचित समाधान कारक उत्तर दिए जा चुके हैं, इसमें संदेह है। शंकर अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म का नहीं उसके सोपाजिक रूप ईश्वर का अवतार होता है, पर तुलसी राम को निर्गुण ब्रह्म का अवतार लिखते हैं। उनके साथ ही जितने अधिक ब्रह्म हैं उतने विष्णु नहीं। बालकांड 132, 140, 144 तथा उत्तरकांड 129। ब्रह्मा विष्णु और महादेव उनकी दृष्टि में देवता हैं, जो साधारण जीवों से स्वल्पांश में ही ऊपर उठे हुए हैं। उनको विधिता हरिता और शिवता अर्थात रचना पालन और संहार की शक्ति देने वाले राम हैं। राम में ऐसे सैकड़ों विधि हरि और शिवों की शक्ति है पर वे स्वयं इनके कार्यों को नहीं करते इनसे कराते हैं। एक स्थान पर राम की शक्ति सीता जिसे वे माया भी कहते हैं और दूसरे स्थान पर पार्वती इन कार्यों को करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम मानस का प्रारंभिक श्लोक 5। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभुवर धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी बालकांड 122। जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाला राम का गुण भी समझ में नहीं आता। दार्शनिक दृष्टि से जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा, चेतन कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो चेतन है वह अपनी चेतनता का परित्याग नहीं कर सकता। यदि जल के शीतल और उष्ण होने का उदाहरण दे तो वह भी यहाँ पूर्णतया घटित नहीं होगा। जल अग्नि के संयोग से क्षणिक उष्णता प्राप्त करता है, सदैव के लिए उष्ण नहीं हो जाता। स्वल्प काल में ही वह अपना स्वाभाविक गुण ग्रहण कर लेता है। यदि उसका यह गुण विनष्ट हो गया होता तो पुनः आ कैसे जाता? चेतन जीव कर्म विपाक वश वृक्षादि योनियों में जड़वत प्रतीत होता है, वस्तुतः वह जड़ नहीं अंतर संज्ञा बनकर वहाँ रहता है। कर्म के संबंध में प्रथम तो सबको अपने अपने कर्मों का भोक्ता कहना और फिर और करे अपराध को और पाव फल भोग अयोध्याकांड 78 जैसी उक्तियों में भगवान की विचित्र गति बताकर फल भोग में व्यतिक्रम उत्पन्न कर देना क्या समीचीन कहा जा सकता है? इसी प्रकार की एक असंगति राम को सबका प्रेरक मानने में है। यदि राम ही प्रेरक हैं तो जीव को बंधन में डालने वाले हैं तो दोष किसका है? तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बिरजे विनय पत्रिका 89। तुलसीदास यही जीव मोह रजु जोई बांधो सोई छोरे विनय पत्रिका 102। काल करम जीव जाके हाथा लंकाकांड 9। यही नहीं विराज जैसे सीता अपहर्ता राक्षस को भी तुलसी राम के निज धाम वैकुंठ भेजते हैं अरण्यकांड 16 और द्विजामिष भोगी खल मनुजादो को योगियों द्वारा याचित गति प्रदान करते हैं लंकाकांड 65। क्या यह कर्म मर्यादा का विघातक नहीं है? राम सरिस को दीन हितकारी किन्हे मुक्त निशाचर धारी रमाकार भय तिनके मन गए ब्रह्म पद तजी शरीर रन खल मल धाम काम रत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन लंकाकांड 140। लीला तुलसी निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म को ही लीला में सगुण तथा साकार बना देते हैं। निराकार रूप में भी राम लीला करते हैं, इसकी ओर भी उनकी दृष्टि गई है। यथा बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ध्यान बिनु आस बिनु बास असेखा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं बरनी बालकांड 142। पर उनकी नयन गोचरी लीला रचना तथा अवतारों में ही प्रकट होती है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय भगवान की भ्रकुटि का विलास मात्र है, लीला या खेल है। तुलसी लिखते हैं उमा राम की भ्रकुटि विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा लंकाकांड 53। नट एव कपट चरित करिनाना सदा स्वतंत्र राम भगवाना। लंका कांड 94। राम भगवान सदा स्वतंत्र हैं, नट की तरह कपट वेश धारण करके वे नाना लीलाएं करते हैं। राम के ये सगुण चरित्र बुद्धि और वाणी की शक्ति से परे हैं, इनकी तर्कना नहीं की जा सकती। चरित्र राम के सगुण भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। लंका कांड 95। निम्नांकित दोहे में तुलसी ने निर्गुण लीला से सगुण लीला का समझना कठिन माना है। निरागुण रूप सुलभ अति, सगुण न जानहि कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। उत्तर कांड 107। तुलसी को यही सगुण लीला प्रिय है, निर्गुण नहीं। काक भुशुंडी के मुख से तुलसी कहलाते हैं, निर्गुण मति नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी। उत्तर कांड 182। विविध भाति मुनि मोहि समझावा, निर्गुण मत मन मम हृदय न आवा। राम भगति जल मन मम मीना, किमि बिलगाए मुनीस प्रवीणा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, सब सुनिहौ निर्गुण उपदेशा। उत्तर कांड 186। सृष्टि की रचना इसी लीला का एक भाग है। रचना के समय शंभु किरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत ते नाना। बाल कांड 172। प्रभु के अंशों से अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के द्वारा भगवान सृष्टि की रचना पालन और संहार कराते हैं। ये तीनों ही क्रियाएं प्रभु की लीलाएं हैं। परमेश्वर अपने सेवकों और भक्तों के कारण लीला शरीर भी धारण करते हैं, यथा भगत हेतु लीला तनु गहई। बाल कांड 172। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। बाल कांड 140। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। बाल कांड 237। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद। बाल कांड 230। भगवान की यह लीला देवताओं के लिए हितकर परंतु दानवों के लिए मोह मुक्त कारणी है। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। बाल कांड 137। इस लीला का उद्देश्य दुष्टों का दमन और सज्जनों की रक्षा करना है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धर्मी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति केतु, जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। बाल कांड 148। विप्र धेनु सुर संत हित, जीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बाल कांड 224। रामावतार के कई ऐतिहासिक कारण भी हैं। कश्यप और अदिति ने महान तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे दशरथ तथा कौशल्या के रूप में आगामी जन्म में उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण 219। अपनी तपस्या के फल रूप में उन्होंने भगवान को अपनी गोद में खिलाया। मनु और शत्रुपा का तप ही यही परिणाम लाता है। बाल कांड 179। मनु प्रभु चरणों में सुत विषयक वात्सल्य प्रेम की याचना करते हैं। मनु दशरथ बनते हैं और शत्रुपा कौशल्या के रूप में अवतरित होती हैं। दोनों को तप के फल स्वरूप राम पुत्र बनकर आनंदित करते हैं। इन कथाओं का संबंध विभिन्न कल्पों अथवा मनमंत्रों से माना जाएगा, अन्यथा एक ही समय में कश्यप एवं अदिति और मनु एवं शत्रुपा दशरथ तथा कौशल्या के रूप में जन्म नहीं ले सकते। 2. नारद का शाप। नारद ने मोहिनी प्रसंग में भगवान को शाप दिया था, नारी विरह तुम होब दुखारी। बाल कांड 165। भगवान ने कहा, नारद वचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो। बाल कांड 219। भगवान राम के रूप में उत्पन्न हुए और वन में अपनी पत्नी सीता को खोकर दुखी हुए। विरह वंश भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अरण्य कांड 73। 3. जलंधर दैत्य की पत्नी का शाप। तुलसीदास ने इसे पूर्व कल्प की घटना माना है। विष्णु ने जलंधर दैत्य के अत्याचारों का शमन न होते देखकर उसकी पत्नी के पातिव्रत को भंग किया। जलंधर आगामी जन्मों में रावण बना। रावण जो सीता को चुराता है वह मानव पूर्व जन्म कृत पत्नी के पातिव्रत भंग का राम से बदला लेता है। 4. रावण के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी और देवताओं के दुख को दूर करना। इस प्रसंग में तुलसी ने प्रताप भानु, हिरण्यकशिपु और जलंधर को रावण के रूप में अवतरित होते दिखाया है। यहाँ भी तीनों का समय एक नहीं हो सकता। इन कथाओं का संबंध भी विभिन्न युगों से माना जाएगा। लीला में राम और उनकी शक्ति, पुरुष और उनकी प्रकृति, ब्रह्म और उनकी माया दोनों एक साथ रहते हैं। तुलसी राम की ही भांति आदि शक्ति सीता के त्रिपुटी विलास माता से भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। यह सीता राम के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। तुलसी लिखते हैं, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंत उपजही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, त्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। बालकांड 176। सीता तो राम की शक्ति है, अतः लीला में भगवान के साथ रहती है। इसके अतिरिक्त वे देव भी जो सगुण उपासक हैं और भगवान के साथ मोक्ष में रहते हैं, उनके अवतार के साथ रीच वानर आदि के विग्रहों में प्रकट होते हैं और भगवान की लीला में भाग देते हैं। ब्राह्मण संगत से कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा अवतरई प्रभु, सुर मही गो दिजलागी, सगुन उपासक संग तह, रहहिं मोक्ष सब त्यागी। किष्किंधा कांड 29। इस लीला का कोई हेतु नहीं है। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। बालकांड 168। प्रभु स्वयं लीलामय है, उनकी लीला लीला के लिए है। पुराण कल्पित और तुलसी द्वारा वर्णित इन लीलाओं में भी अनेक स्थानों पर असंगतियां हैं। यदि राम के हाथों मरकर रावण और कुंभकर्ण मोक्ष पाते हैं तो हिरण्यकश्यपु भी तो विष्णु के अवतार नरसिंह द्वारा मारा जाता है, उसे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? वह रावण रूप में पुनः क्यों जन्म लेता है? हिरण्याक्ष पुनः क्यों कुंभकर्ण बनता है? क्या वे बार बार भगवान के हाथों मरना चाहते थे? संकादि द्वारा जय और विजय को दिया हुआ श्राप इस लीला को और भी पीछे ले जाता है, पर क्या श्राप का प्रभाव भगवान से भी बढ़कर है? इस श्राप की कथा भी विचित्र है। द्वारपालों का कार्य भी आगंतुकों को बिना पूर्व आज्ञा के अंदर जाने से रोक लेना है, इस कर्तव्य पालन पर श्राप कैसा? जलंधर जैसे की कथा में और भी अधिक असमीचीनता है। वह महाशक्तिशाली है जिसे सृष्टि के संहारकर्ता महादेव भी नहीं मार सके। क्या वह सृष्टि से पृथक था? उसे मारने के लिए विष्णु को महादेव की सहायता में छल का प्रयोग करना पड़ा। वह छल भी एक सती साध्वी स्त्री के पातिव्रत को भंग करना है। इसे आप राजनीति भले कहें, धर्म नीति तो कदापि नहीं कह सकते। इससे आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं होती। क्या महादेव का रुद्रत्व इतना अशक्त है? क्या वह भगवान द्वारा छल सहाय की अपेक्षा रखता है? जिसकी भ्रिकुटी भंगिमा मात्र से निखिल ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, वह एक दैत्य को मारने के लिए इतना पोच प्रयोग करे, आदर्श की अशोभन उपेक्षा और मर्यादा की मर्मांतक हत्या करे, यह समझ में नहीं आता। इन असंगतियों को लीला कैवल्य कहकर टाला नहीं जा सकता। मानव बुद्धि इनसे भ्रम में पड़ती है और कर्मकांड को धक्का लगता है। तुलसी चाहे जितनी गालियाँ देकर अभि प्रमादी मोहवश अधम पाखंडी पिशाच अंध अभागा अज्ञ लंपट कपटी कुटिल जल्पी मत्स्य वातुल भूत विवश काक आदि कहकर पर पक्ष की जिह्वा को दबाना चाहे, पर क्या अनुभूति कभी दबाई जा सकी है? राम को मनुष्य और राजा समझने वालों पर तुलसी बरस पड़ते हैं। सात राम नहीं नर भूपाला। सुंदरकांड 40। राम मनुज बोलत असिवानी, गिरही न तव रसना अभिमानी। लंकाकांड 49। पति रघुपति ही नृपति मति मानहु। लंकाकांड 55। से ही कह प्रिय पुनि पुनि नर कहऊ, मुधा मान ममता मद बहु। लंकाकांड 56। पर स्वयं उनके बाल एवं भूपाल रूप पर मुग्ध हैं। जो कौशल पति राजीव नैना, करो सो राम हृदय मम ऐना। अरण्य कांड 21। क्या यह असंगत नहीं है? इस प्रकार स्वर्ग लोक तक पहुँच कर तो अनेक व्यक्ति गिरते देखे गए हैं, पर सत्य लोक के निवासी नारद भी स्खलित हों, बालकांड 166। यह आश्चर्यजनक है। धाम। तुलसी ने वेद के परम पद की भांति राम के धाम को परम धाम कई स्थानों पर लिखा है। यह परम धाम परम व्योम है। यह व्योम लोक लोकांतरों का निवास धाम है, तो इससे भी परे व्योम परम व्योम या परम धाम प्रभु का धाम है। यथा अज सच्चिदानंद पर धामा। बालकांड 23। तथा भय परम पद के अधिकारी। अयोध्या कांड 140। पुराणों में जिन धामों का वर्णन है उनमें से क्षीर सागर और वैकुंठ का नाम तुलसी ने लिया है। यथा क्षीर सागर पय पयोधि तजि अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। अयोध्या कांड 140। यहाँ पय पयोधि का अर्थ क्षीर सागर है। लंका कांड 2:134 के ऊपर वाली संध में तुलसी क्षीर सागर को विष्णु का ससुर लिखते हैं। जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम ही समरपि आनितो। वैकुंठ अस कही जोभ अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अरण्य कांड 18। वैकुंठ को ही सुरधाम कहते हैं, ब्रह्मादि देव इसी में निवास करते हैं। यथा देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। बालकांड 112। दशरथ को भी मृत्यु के पश्चात यही लोक प्राप्त हुआ था। दशरथ हर्षि गए सुरथामा, लंका कांड 138। तुलसी ने वैकुंठ को एक योग की माना है, परंतु निम्नांकित अर्थाली में राम भक्ति की अकुंठित अवस्था से लाभ होता है, उसी को वे वैकुंठ कहते हैं। सुनो मतिमंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। लंका कांड 141। विभीषण भी इसी धाम में गया, सभी संत और भक्त इसी धाम में जाते हैं। पुनि मम धाम सिधा ही हो, जहाँ संत सब जाने। लंका कांड 46। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 10 का तृतीय धाम भी यही जान पड़ता है, जिसमें अमृत का उपभोग करते हुए देव स्वच्छंद विचरण करते हैं। क्षीराब्दि यतिष्ठती तत्रैव अज सर्व हरि सहित गच्छति गच्छन्ति चिराग्निवासी। यत्र चिराग्नि क्षीर सागर ही है, जिसका उल्लेख नीचे उद्धृत चरण में भी पाया जाता है। उरग नायक शयन तरुण पंकज नयन क्षीर सागर अयन सर्ववासी। विनय पत्रिका 5:55। अयोध्या को कवि ने सुखराशि तथा भगवान का धाम प्राप्त कराने वाली कहा है। मम धामदा पुरी सुखराशि, उत्तरकांड 12। राम को यह पुरी वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोह न सो, यह प्रसंग जाने को को। उत्तरकांड 11। कहीं कहीं धाम को हरिपद, ब्रह्मपद, निज धाम, मम धाम, राम धाम, रघुपतिपुर, हरिपुर, हरिधाम आदि भी कहा गया है। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ केवलता है, जहाँ आत्म तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता अवशिष्ट नहीं रहती। तुलसी ने नीचे लिखी पंक्ति में श्री कैवल्य अवस्था या धाम का उल्लेख किया है। साधु पद सलिल निर्धूत कलमश सकल स्वपथ यवनादि कैवल्य भागी। विनय पत्रिका 57। तुलसी ने भक्ति के अभेद भक्ति और भेद भक्ति नाम के दो भेद किए हैं। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगति पर लयउ। अरण्य कांड 12। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भगति मन लावा। लंका कांड 138। अभेद भक्ति वाले राम के रूप में लीन हो जाते हैं, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भेद भक्ति वाले सालों के मुक्ति पाते हैं, जिसमें वे निज धाम राम धाम या वैकुंठ में राम के साथ रहते हैं। सामिप्य मुक्ति भी यही है। सारूप्य मुक्ति में भगवान साधक के रूप का ही बन जाता है, साधक भगवान के रूप का ही बन जाता है। जटायु का यह रूप प्राप्त हो गया था, परंतु अंत में वह हरि लोक को ही गया। लंका के युद्ध में निहित राक्षसों के मन रामाकार हो गए थे, परंतु वे भी शरीर छोड़कर ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। रामाकार भये तिनके मन, गए ब्रह्मपद तजी शरीर रण। लंका कांड 140। शबरी हरि चरणों में लीन हो गई थी, अतः सायुज्य मुक्ति की अधिकारिणी बनी। कुंभकर्ण और रावण का तेज भी प्रभु के मुख में समा गया था, पर कुंभकर्ण को तुलसी ने फिर भी हरिधाम हटा वैकुंठ में ही भेजा। लंका कांड 92। और रावण को भी निज धाम दिया। लंका कांड 128। वैकुंठ और क्षीर सागर का नाम लेकर तुलसी उनमें निवास करने वाले अपने राम को सर्वत्र व्यापक भी लिखते हैं। यथा पर वैकुंठ जा न कह कोई, को कह पयन ही बस प्रभु सोई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बालकांड 217। भक्ति मार्ग। ऊपर भगवान के जिस पौराणिकता प्रधान स्वरूप का विवेचन किया गया है, वह सामान्य की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक है। उसका नाम रूप और धाम हम शरीरधारी मानवों के ही समान है। उसके लीला क्षेत्र भी प्राय वैसे ही है जैसे हमारे, पर कहीं कहीं विरोधात्मक तथा अतिमानव कार्यों का सन्निवेश उन्हें हमसे पृथक भी कर देता है। तुलसी ऐसे कार्यों को व्याख्या में राम के ईश्वर की दुहाई देने लगते हैं। गुणों के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए, ये प्राकृत तथा अति प्राकृत दोनों ही प्रकार के हैं। भक्ति मार्ग का प्रवर्तन प्रभु के अति मानव तथा अति प्राकृत गुणों के आधार पर हुआ है। मानव अपनी हीनता निर्बलता तथा तत्जन्य व्याकुलता के कारण किसी ऐसे व्यक्तित्व की शरण में जाना चाहता है, जो उसे सबल तथा सुखी बना सके। विश्व में बल और सुख के प्रतीक एक से एक बढ़कर है। जिसमें जितनी ही अधिक प्राणवत्ता है उतनी अधिक मरण शक्ति है, जितनी ही अधिक ज्ञान प्रकाश है उतना ही अधिक शक्तिशाली और सुखी है। पर मानव के सुख और सामर्थ्य की सीमा है। यहाँ बड़े से बड़ा समर्थ मानव भी अपने समस्त संकल्पों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। वह अंत में अनुभव करता है कि उससे भी ऊपर कोई अज्ञात शक्ति है, जो उसकी सफलता और असफलता का नियमन करती है। मानव के प्रयत्न चाहे जितने शोध के साथ संगठित किए गए हों, कभी न कभी उसे धोखा दे ही देते हैं। किसी कवि की उक्ति है, नैया नई मलाह घनेरे, बहुत जतन धरिए, उछली लहर डूबी गई नैया, व्याको का करिए। मानव के इसी प्रकार के अनुभव से उस अज्ञात शक्ति की ओर ले जाते हैं, जो अपने सामर्थ्य में मानव तथा प्राकृत दोनों शक्तियों से ऊपर है। इनका नियंत्रण करती है और उन्हें सफलता तथा विफलता की ओर ले जाती है। यह शक्ति निश्चित रूप से रहस्यात्मक है। तुलसी ने मानव विग्रह देकर उसके रहस्यमय व्यक्तित्व को उन्मुक्त कर दिया है। जो व्यक्ति इस रहस्यात्मक व्यक्तित्व की खोज में निरत होते हैं वे साधक हैं। जो इसे प्रेम करते हैं वे भक्त हैं। ज्ञानी इसे ब्रह्म, कर्मकांडी इसे परमात्मा और भक्त इसे भगवान कहकर पुकारते हैं। सबके पथों के नाम भी इसके आधार पर पृथक पृथक हैं। भक्त का प्रेम मार्ग भक्ति कहलाता है। भक्ति मार्ग में इस प्रकार भक्त, भगवान और भक्ति तीन तत्वों की प्रधानता है। इस मार्ग का उपदेष्टा कोई सिद्ध संत होता है जिसे गुरु कहते हैं। गुरु का महत्व भी भक्ति पथ में असंदिग्ध है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल श्री रूप कला जी लिखते हैं कि गोस्वामी नाभा जी का नाम नभ भूज है। आप नभ के हैं अर्थात अयोनिज हैं, परंतु भू अर्थात पृथ्वी पर जो अर्थात उत्पन्न हुए हैं, अतः नभ भूज हुए। नभ भूज का संक्षिप्त रूप नाभा है। अथवा जैसे शरीर का केंद्र नाभि है, उसी प्रकार भक्तों का यशोगान गाने में केंद्र रूप नाभा जी है। नाभादास जी की भक्तिमाल को पहचान केंद्र बनाकर उस पर फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी में कम से कम 16 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। का प्रारंभ करते हुए वंदना रूप में निम्नांकित दोहा लिखा है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री रूप कला जी सभाष्य लिखते हुए लिखते हैं, भक्त का भगवान के चरण कमलों में सच्चा प्रेम होता है। अपने गुरु तथा अन्य भगवत भक्तों को भी वह भगवत स्वरूप ही समझता है। इन भाग्य भाजन भक्तों के हृदय कमल में भक्ति भवानी सदैव शोभायमान रहती है। रस रूपा भक्ति भक्त के हृदय को सर्वदा प्रेम भाव से आर्द्र रखती है। भक्त के भाव का ही नाम भक्ति है। भक्त के दिव्य गुण यदि फल है तो भक्ति उनका रस है। जिनके उपदेश तथा प्रसाद से साधकों को भगवत भक्ति प्राप्त होती है उन्हें गुरु कहते हैं। सच्चा गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं लेता, उसे देता ही है और देता ही नहीं उसे कृतार्थ भी कर देता है। भक्ति प्रीति है। यह भक्त के अंदर भगवान के प्रति गुरु द्वारा जागृत की जाती है। पृथक पृथक दिखाई देने पर भी भक्ति भक्त भगवान और गुरु वस्तुतः एक ही है। जैसे आंखें दर्पण में अपने रूप को देखती है तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य, दर्शक, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदाय सब एक ही रहते हैं। उसी प्रकार ये चारों भी एक ही हैं, उनमें भिन्नता नहीं है। इस अभेद दृष्टि से इन चार रूपों में एक भगवान ही जीव के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं और वे हैं वंदनीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रभु अंतर्यामी रूप से भक्त के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। इस हृदय में उदय उपाय रूप भक्ति उत्पन्न होती है जो साक्षात प्रभु की ही कृपा शक्ति है। इसे उद्दीप्त करने वाले तथा इष्ट मंत्र के रूप में हितकारी उपदेश देने वाले गुरु हैं। भगवान तथा भक्त का सुयश गान करने से साधक का हृदय मंगलमय बन जाता है। भक्त के लक्षण। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने पर जब राम ऋषि से अपने रहने के लिए स्थान पूछने लगे तो वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया उसमें भक्त के लक्षणों का अच्छा समावेश है। वाल्मीकि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुम कहां गुरु गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहा ही दरस जलधर अभिलाषे, निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुन गन सुनई, राम बसहु ही तासु। अयोध्या कांड 129। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपही तुम्हारा, पूजन तुमही सहित परिवारा, तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जिमाई देही बहुताना, तुमसे अधिक गुरु ही किए जानी, सकल भाव से वह सन्मानी, सब करु मागहि एक फलु, राम चरण रति देहु, काम मोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रसंगा प्रसंसागारी, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धन पराव विष्टे विष भारी, जे हर्षही पर संपति देखी, दुखित हो ही पर विपति विसेखी, स्वामी सखा पितुमा सात गुरु जिनके सब तुम सात अवगुण तजी सबके गुण लहनी विप्रथेनु हित संकट सहनी नीति निपुण जिनके जगली का कर तुम्हार तिनकर मनुनी का गुण तुम्हार समझे निज दोषा राम भगत प्रिय लागही देही जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई सब तजी तुम्हारी रह लो लाई सरगु नरगु अपवरगु समाना जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना जाही न चाहिए गबहु पशु तुम सन सहज सने हो 132 अरण्य कांड 228 में भी भक्त के लक्षण संक्षेपता इसी प्रकार है। इन पंक्तियों में कुछ लक्षण निषेधात्मक है और कुछ विधि परक। निषेधात्मक जैसे भक्त के अंदर काम क्रोध मद मान मोह लोभ शोभ राग द्रोह माया नहीं रहते। वह जाति पाति धन धर्म प्रशंसा प्रिय परिवार और सुखद गृह का परित्याग करके केवल राम में अपनी प्रवृत्तियों को केंद्रित करता है। मन वचन और कर्म से वह भगवान का सेवक बनता है। राम प्रेम के अतिरिक्त वह कभी किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। विधि परक लक्षणों में कुछ सदाचार से संबंध रखते हैं, कुछ पूजा अनुष्ठान आदि कर्म कांड से, कुछ सामाजिक परोपकार आदि कर्मों से, कुछ बाह्य श्रवण कीर्तन आदि से और कुछ आंतरिक तन्मयता तथा अनन्यता से। पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को विष के समान समझना, विचार पूर्वक सत्य और प्रिय वचन कहना, अवगुणों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना, सिर झुकाकर देव गुरु और विप्रों को प्रणाम करना, सुख दुख तथा निंदा स्थिति में समान भाव रखना सदाचारिक लक्षण है। प्रभु समर्पण पूर्वक और प्रभु का प्रसाद समझकर भोजन करना तथा वस्त्राभूषण धारण करना, तीर्थ यात्रा मंत्र राज श्री रामाय नमः का जाप, प्रभु पूजा तर्पण होम आदि का अनुष्ठान, विप्रों को जिमाना तथा दान देना कर्म कांड से संबंध रखते हैं। सबका प्रिय और हितकारी बनना, पर वैभव से प्रसन्न और पर विपत्ति से दुखी होना, विप्र तथा गौ के लिए संकट सहना, नीति निपुण कोटि विघ्न में संत कर मन जिमी नीति का त्याग। लंका कांड 52 प्रीति राम सो नीति पथ चलिय राग जस जीति दोहावली 86 बनकर मर्यादा मार्ग पर चलना सामाजिक लक्षण है। श्रवणों से राम कथा का श्रवण, आंखों से प्रभु रूप दर्शन की अभिलाषा, जीवा द्वारा भगवान के गुणों का कीर्तन भक्ति के बाह्य प्रकारों से संबद्ध है। सब साधनों का एकमात्र फल राम चरण अनुराग को मानना, स्वर्ग नरक अपवर्ग सर्वत्र धनुर्धर राम के दर्शन करना, भक्ति परक तन्मयता के अंतर्गत आते हैं और एकमात्र राम का आश्रय मन वचन कर्म से प्रभु की सेवा करना, जागृत स्वप्न आदि सभी अवस्थाओं में एक प्रभु की शरण ग्रहण करना, राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भी शरण में न जाना, राम को ही अपना स्वामी सखा पिता माता तथा गुरु समझना अनन्य भक्ति के सूचक लक्षण हैं। ऊपर उद्धृत मानस की चौपाइयों के आधार पर भक्तों के लक्षणों का जो क्रमबद्ध वर्णन उपस्थित किया गया है वह तुलसी द्वारा वर्णित क्रम के अनुसार नहीं है। वहाँ किसी क्रम पर ध्यान केंद्रित हो सका है यह कहना भी कठिन है, वरन यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जो कुछ शुभ सामने आता गया उसी को तुलसी ने चौपाइयों में आबद्ध कर दिया है। इसी हेतु वहाँ क्रम का अभाव ही नहीं, कुछ बातों की पुनरावृत्ति भी हो गई है। अरण्य कांड 278 और 79 में जो संतों के लक्षण लिखे गए हैं वे उपर्युक्त भक्त लक्षणों से समता रखते हैं। कुछ बातें संतों में भक्तों से अधिक हैं। भक्त में भक्ति पक्ष प्रधान होता है और उसमें हृदय की रागात्मिका वृत्ति विशेष रूप से क्रियाशील रहती है। संत भी भक्त होता है परंतु उसका जीवन क्रम रागात्मिका वृत्ति के साथ बोध वृत्ति को भी अपनाता हुआ चलता है। गोस्वामी जी के शब्दों में छठ विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनिह मित भोगी सत्य सार कवि गोविंद जोगी सावधान मानद मद हीना धीर भगति पथ पदम प्रवीणा गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह सजी मम चरण सरोज प्रिय जिन कह देह न गेह। अरण्य कांड 77 निज गुण श्रवण सुनत सब चाही पर गुण सुनत अधिक हर शाही सम शीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सबन संस्कृति जप तप व्रत दम संजन नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जसारत वेद पुराना जन्म मान मद करन ही न काऊ भूलि न देहि कुमार गाऊ गाव ही सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रत शीला। आगामी छंद में गोस्वामी जी ने स्वयं ही इन लक्षणों को भगत गुण कह दिया है। उत्तर कांड 260 और 61 में भी इन्हीं के समान संत लक्षण वर्णित हुए हैं। ऊपर वर्णित भक्त लक्षणों से इन संत लक्षणों की तुलना करने पर जो प्रमुख अंतर दिखाई देता है वह अमित एवं यथार्थ बोध और विज्ञान का है। तुलसी का संत कवि है कोविद है और योगी है। उसमें वैराग्य की षट संपत्ति षट विकार काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य पर विजय, पवित्रता अकिंचनता, भक्ति पथ की प्रवीणता, एकमात्र भगवान का आश्रय, समता नीतिमत्ता सरलता, सबसे प्रेम, गुरु गोविंद विप्र के चरणों में प्रणत होना, कुमार्ग पर भूल कर भी पैर न रखना, भगवत लीला का श्रवण और गान, फलाकांक्षा रहित होकर परोपकार में निरत रहना इत्यादि, वैसे ही शील गत समाज गत तथा भक्ति परक लक्षण है जिनका उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। अनुष्ठान मूलक लक्षण इस सूची में अवश्य नहीं आते। भक्ति की महत्ता, ऐसे भक्तों के लिए गृह और वन एक जैसे हैं। तुलसी लिखते हैं, पर ही तरह तक ये राम पद भक्ति सदा सतसंग, सहज विराग उदार जे का वन का गृह रंग, जे जन रुखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के का वन बसही की गेह। दोहावली 61। जो भक्त सीताराम के चरणों में अनुराग रखता है, पर हित में निरत है, सदैव संतों के सहवास में रहता है, स्वभाव से ही विरागी है, उदार है, विषय वासनाओं की ओर से परांगमुख है, और राम का प्यारा भक्त चाहे वन में रहे और चाहे गृहस्थ आश्रम में, दोनों दशाएं उसके लिए समान है। वैष्णवों का वैखानस संप्रदाय तप प्रधान था, पीछे हम उसकी तपश्चर्या का उल्लेख कर चुके हैं। पांचरात्र संप्रदाय भक्ति को प्रमुख स्थान देता है। ये दोनों विशेषताएं आगे चलकर एक में मिल गईं। प्रधानता घर और वन की नहीं, तपों में भक्ति प्रधान जीवन की हो गयी। तुलसी ने इन भक्तों का मुक्त कंठ से यशोगान किया है। समाज में ये भक्त दूर से पहचाने जा सकते हैं। इनके हृदय में सीता और राम शरीर उनके प्रेम से पुलकायमान, जीवा पर राम नाम का जाप और नेत्रों में प्रेमाश्रु निवास करते हैं। पुलक गात हियसी रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। अयोध्या कांड 327। काम क्रोधादि से पृथक रहकर ये भक्त समस्त संसार को राममय अनुभव करते हैं और परिणाम तक किसी से विरोध नहीं करते। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। उत्तरकांड 179। जैसे मछली अगाध जल में सुखी रहती है, उसी प्रकार ये धर्मशील हरि भक्त सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे भक्तों के प्रति जो अपराध करता है वह राम के क्रोधानल में भस्म हो जाता है। भक्त से द्रोह करके कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रभु भक्तों की रक्षा करने में सदैव दत्तचित्त रहते हैं, यह उनका प्रण है। वे भक्त की भूल को ध्यान में नहीं लाते, पर उसके हृदयगत प्रेम भावना का सदैव स्मरण किया करते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अयोध्या कांड 219। रह दिना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सौ बार दिए की। बाल कांड 46। इस संबंध में हनुमान का उदाहरण देते हुए महादेव पार्वती से कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उत्तरकांड 73। नीच प्राणी भी अधिक भक्ति संपन्न है तो वह प्रभु को प्राणों से भी अधिक प्यारा लगता है। भगति वंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अति मम वाणी। उत्तरकांड 121। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि भूम गिरी सिर तृण चरही। अयोध्या कांड 286। भक्त की अकिंचनता तथा दैन्य का अनुभव करता है, इसी कारण वह प्रभु का प्यारा बनता है। सही से कहानी संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। बालकांड 190। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। उत्तरकांड 35। गिरिजा रघुपति क्या यह रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। लंकाकांड 6। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका 165। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। बालकांड 218। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। लंकाकांड 10। जो प्रभु के प्यारे हैं, जिन्हें राम अपना समझते हैं, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े हैं। जिन सम पुण्य पुंज जगत हो रे, जिन्हें राम जानत परिमोरे। अयोध्याकांड 275। राम कीन आपनु जग हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। अयोध्याकांड 197। राम सदैव अपने भक्त की रुचि रखते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। अयोध्याकांड 220। वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, रघुपति भगत भगति बस अहमी। अयोध्याकांड 266। गीता 7:16 के समान तुलसी ने भी बालकांड 238 में चार प्रकार के भक्त माने हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तुलसी की सम्मति में चारों प्रकार के भक्त पुण्यात्मा पापहीन और उदार होते हैं। चारों को नाम का आधार रहता है, पर ज्ञानी भक्त प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। निर्गुण का उपासक ज्ञानी मोक्ष पाता है, पर सगुण उपासक मोक्ष नहीं चाहते। राम उनको अपनी भक्ति देते हैं। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कह राम भगति निज देहि। लंका कांड 138। जन कह कछु अदेय नहीं मोरे अस विश्वास सजहु जनि मोरे। अरण्य कांड 74। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे भगवान अपने भक्त को नहीं दे सकते। सुनो मुनि तो ही कहो यह रोसा सह रोसा भजही जे मोहि तजी आन भरोसा करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक ही राख महतारी। अरण्य कांड 76। जो सबका भरोसा छोड़कर एक भगवान का भजन करते हैं भगवान उनकी वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है। वचन काय मन मम गति जाहि सपने बूझिए विपत्ति की ताही। सुंदर कांड 33। मन वचन और शरीर से जिनकी गति एकमात्र प्रभु है उसे स्वप्न में भी विपत्ति आवृत नहीं कर सकती। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। सुंदर कांड 33। भक्त जब प्रभु का स्मरण और भजन नहीं कर पाता तभी वह अपने को विपत्ति से घिरा हुआ पाता है। भक्त यदि किसी कार्य में सफलता पाता भी है तो उसे प्रभु के प्रताप का ही प्रसाद समझता है। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सुंदर कांड 34। सामाजिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में भक्त एवं संत की सत्ता अनायास प्रकट हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसके प्रति अप्रियाचरण करता है तो उसके भी साथ भक्त भलाई एवं प्रियाचरण करता है। उमा संत के इहै बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। सुंदर कांड 43। यह तो भक्त या साधु का आचरण हुआ परंतु जो साधु की अवज्ञा करता है वह अपने समस्त कल्याण कर्मों से हाथ धो बैठता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। सुंदर कांड 44। भक्त के लिए निष्कपट होना परम आवश्यक है। तुलसी लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चलचित्र न भावा। सुंदर कांड 46। छल छिद्रों से रहित मन ही निर्मल होता है। ऐसे निर्मल धर्मशील भक्तों के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए ही आती है। जिमि सरितार सागर मह जाही जजपि ताही कामना नाही जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्म शील वही जाही सुखाए। बाल कांड 327। राम विभीषण से अपने स्वभाव की बात कहते हुए भक्त की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। सुनहु सखा निज कहहु स्वभाव जान भूषण की शंभु गिर जाओ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभे शरण तकी मोही सजी मद मोह कपट छलनाना करौं सज्ज तेहि साध समाना जननी जनक बंधु सुत दारा सनु धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटी डोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। सुंदर कांड 50। जो मानव माता पिता बंधु पत्नी पुत्र शरीर धन सुहृद परिवार आदि सबकी ममता को छोड़कर मेरे चरणों में अपना मन लगा देता है जो इच्छा रहित हर्ष शोक भय आदि से परांगमुख और समदर्शी है वह चर एवं अचर सबसे द्रोह करके भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है तो मेरे हृदय में वैसे ही बस जाता है जैसे लोभी के हृदय में धन। भगवान की प्रियता उत्तर उत्तर बढ़ती हुई सबसे अधिक भक्त पर ही आकर केंद्रित होती है। तुलसी लिखते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए तिन महाद्विज द्विज महाश्रुति धारी तिन महानिगम धर्म अनुसारी सिंह महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी हो ते अति प्रिय विज्ञानी तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहो सोहि पाही मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। उत्तर कांड 131। काक भुषुंडी के प्रति कहे गए राम के ये वचन अनन्य भक्ति की प्रभु प्रियता प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा ही भक्त प्रभु के हृदय में स्थान पाता है। मानव जीवन की सार्थकता आकर 484 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण केरा कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत स्नेही नर तनुभव बारिदी कहा बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उत्तर कांड 67। सम तम रज रज सत और सत नाम के चार आकरों में विभक्त 84 लाख योनियों में अविनाशी जीव भटकता रहता है। माया की प्रेरणा से अकाल कर्म स्वभाव और गुणों के चक्र में पड़ता है। अंत में प्रभु की कृपा से इसे मानव शरीर मिलता है जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। इस नाव को यदि भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु और सद्गुरु रूपी कर्णधार प्राप्त हो गए तो पार लगने में कठिनाई नहीं होती। साधन धाम तथा मोक्ष के द्वार मानव शरीर को पाकर भी जो व्यक्ति संसार समुद्र को पार करने का यत्न नहीं करता वह एक प्रकार से आत्मघात करता है। विषय वासना में मन को लगाना मानो विषपान करना है। उत्तर कांड 67। पारस मणि को फेंक कर कांच के टुकड़ों को हाथ में ले लेना है। उत्तर कांड 208। काम क्रोध मद एवं लोभ में निरत होना दुखदायक एवं अंधकारा छन्न कूप में गिरना है। उत्तर कांड 106। माया के इस बृहद परिवार में पढ़कर कौन मोहांध नहीं हुआ। काम ने किसे नहीं नचाया, तृष्णा ने किसे बावला नहीं किया, क्रोध से किसका हृदय दग्ध नहीं हुआ। बड़े से बड़े ज्ञानी तपस्वी वीर कवि कोविद तथा गुणी व्यक्ति भी लोभ की विडंबना से नहीं बच सके। उत्तर कांड 100। शिव और ब्रह्मा तक इस माया से भयभीत रहते हैं, अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। उत्तर कांड 102। लक्ष्मी के नशे और प्रभुता के मद ने प्रायः सभी को कुटिल और बधिर बना रखा है। मृगनयनी वामाओं के कटाक्ष रूपी बाणों ने सभी को विद किया है और माया व्याप्त विश्व में आतप तापित होकर ही प्राणी आत्मानंद रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम करने का अभिलाषी बनता है। सहस्त्रों मनुष्यों में धन्य है वह व्यक्ति जो धार्मिक बनने का व्रत लेता है। करोड़ों धर्मात्माओं में विरले हैं वे व्यक्ति जो विषय से विमुख होकर वैराग्य में अनुरक्त होते हैं। करोड़ों विरक्तों में सम्यक ज्ञान के धनी बहुत थोड़े से मानव ही हो पाते हैं। करोड़ों ज्ञानियों में जीवन मुक्तों की संख्या अति स्वल्प है। जीवन मुक्तों में भी ब्रह्मलीन विज्ञानी मिलना दुष्कर है। धार्मिक विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन विज्ञानियों में मद माया से रहित तथा राम भक्ति में परायण संत भक्त अन्य अत्यंत दुर्लभ है। उत्तर कांड 78। मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्त बनने में है। जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि वह मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में स्नेह करे। दे घरे कर यहु फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। किष्किंधा कांड 26। जो मानव शरीर पाकर राम का भजन करते हैं वही पवित्र और सुंदर है। उत्तर कांड 150। राम विमुख होने के तुल्य कोई हानि नहीं है क्योंकि भगवान के चरणों में अचल अनुराग रखने से ही भव भय का विनाश हो सकता है। उत्तर कांड 138। मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली भक्ति है। अन्य साधन भी जीवन का उत्कर्ष करने वाले हैं पर उन सबका पर्यवसान भक्ति में ही होता है। इस संबंध में तुलसी ने कुल क्रमागत संस्कारों को भी ध्यान में रखा है पर ये संस्कार बनते और बिगड़ते रहते हैं इसका भी उन्हें ज्ञान है। उच्च कुल संभूत होना अच्छा है पर संस्कारों के विकृत हो जाने से यदि उस कुल के साथ पवित्रता एवं दिव्यता का संपर्क नहीं रहता तो उच्च कुल की उच्चता ही समाप्त हो जाएगी और उसमें जन्म लेना साधक के लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा। दूसरी ओर यदि शपथ राम नाम का भजन करता है तो भक्ति विहीन उच्च कुल उत्पन्न व्यक्ति से निस्संदेह अच्छा माना जाएगा। तुलसी भगत सुपच भला भजय रैनी दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहां न हरि को नाम। 38। कुल में भी माता पिता बंधु सुहृद सदन और संपत्ति राम भक्त में यदि सहायक सिद्ध नहीं होते तो व्यर्थ है। जरहु सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहज सहाय। अयोध्या कांड 186। राम विमुक्ता। मानव जब तक प्रभु से परांगमुख रहता है तब तक आनंद का भागी नहीं बन पाता। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। उत्तर कांड 210। परम गति की प्राप्ति उसके लिए शालमली के फूल में से गूदे के निकालने के समान है। हरि से विमुख व्यक्ति धर्म से प्रीति नहीं करते, धर्म से पृथक रहकर वे मूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। अरण्य कांड 1। ऐसी अवस्था में यदि संपत्ति और प्रभुता भी उनके पास आ जाती है तो उनका आना न आना बराबर है। जैसे कुछ सरिताएं सजल स्रोत के अभाव में केवल वर्षा के कारण अल्प काल के लिए अपना वैभव दिखाकर शीघ्र ही शुष्क हो जाती हैं, उसी प्रकार मोह मुक्त मूढ़ों की संपत्ति और प्रभुता उनसे शीघ्र ही विदा हो जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिनु पाई, सजल मूल अधिन सरितन नाही, परशी गए पुनित वही सुखाही। सुंदर कांड 24। और यदि रहती भी है तो उन्हें पाप में प्रवृत्त करती है और परिणामतः त्रिविध दुखों का पात्र बनाती है। प्रभु से विमुख ऐसे पापियों की रक्षा बड़े से बड़े त्रिदेव भी नहीं कर सकते। शंकर सहस विष्णु अजतोही, राखी न सकही राम कर द्रोही। सुंदर कांड 24। सब जगते ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनुभ्राता। अरण्य कांड 3। राम से विमुख व्यक्ति के लिए सारा संसार अग्नि से भी अधिक दाहक बन जाता है। बाह्य सहायता तो दूर, स्वयं उसकी पारिवारिक तथा अंतर शक्ति भी क्षीण हो जाती है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कहू कुल रोगा निहारा लंका कांड 28। वह कामा सक्रता मोह के वशभूत हो प्राणियों से द्रोह करने लगता है जिससे उसका वैभव नष्ट होता है और शांति तो स्वप्न में भी उसके पास नहीं पटकती। ताही की संपत्ति सगुन शुभ सपने को मन विश्राम भूत द्रोहरत मोह बस राम विमुख रत काम लंका कांड 100। तुलसी का निश्चित मत है कि चाहे सृग जल के पीने से प्यास बुझ सके खरहे के सिर पर सींग निकल आए अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे हिम से अग्नि प्रकट हो सके पर राम से विमुख व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामही सत तोष बखाना हिम से अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पाव न कोई। उत्तरकांड 210। संसार के पार्श्व में मानव तब तक आबद्ध रहेगा जब तक वह हरि चरणों की शरण ग्रहण नहीं करता बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेर। उत्तरकांड 210। भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती है? गोस्वामी जी की सम्मति में भक्ति प्राप्ति का सबसे सुगम साधन सत्संग है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावही प्राणी पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता पुण्य एक जग मह नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। उत्तरकांड 68। संतों के संपर्क में आकर साधक उनकी जीवनचर्या से प्रभावित होता है। संत सदैव प्रभु आश्रित रहते हैं अतः साधक भी उनकी देखा देखी भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है और उनसे प्रेम करने लगता है। पर संतों का साथ सहज प्राप्त नहीं है अनेक पुण्यों के प्रताप से ही वह साधक को सुलभ हो पाता है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म मन वचन तथा कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना है। विप्र पद पूजा का वास्तविक अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान धनी ब्राह्मणों की सेवा में रहने से साधक ज्ञान अर्जन करता है जिससे आंखें खुलती हैं और सत और असत का विवेक जागृत होता है। स्वाध्याय का भी यही फल है इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म ईश्वर और ज्ञान दोनों का नाम है अतः ब्रह्म यज्ञ में प्रभु भक्ति और स्वाध्याय द्वारा अथवा ब्राह्मण सेवा द्वारा ज्ञान अर्जन करना दोनों का समावेश है। संत इन दोनों कार्यों को करते हैं अतः सत्संग से साधक के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होता है और वेद शास्त्र आदि के श्रवण तथा राम कथा की चर्चा आदि से ज्ञान वैराग्य प्रबोधक सुबुद्धि का उदय भी। इसी तथ्य का उद्घाटन तुलसी ने निम्नांकित पंक्तियों में किया है। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगति मनि सब सुख सानी ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मति काढ़े भगति मधुरता जाही। उत्तरकांड 206। वेद और पुराण पवित्र पर्वत हैं उनमें राम कथा भगवत चर्चा अनेक प्रकार की सुंदर खाने हैं। संत उसके मर्म को समझने वाले और उनकी सुबुद्धि ही खान को खोदने वाली है। ज्ञान और वैराग्य संतों के दो नेत्र हैं जो प्राणी भाव पूर्वक श्रद्धा सहित खोज करता है उसे संतों के पास सुरक्षित या सुख की खान भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म समुद्र है ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो इस समुद्र को मत कर भगवत कथा रूपी अमृत को निकालते हैं। भक्ति समृद्धि की मिठास है ज्ञान और वैराग्य भक्ति को दृढ़ करने के लिए भूमिका का कार्य करते हैं। शंकर ब्रह्म कुलोद्भव और ज्ञान के मूल स्रोत समझे गए हैं। वैराग्य के तो वे सूर्य विवेक जलधव पूर्णेन्दु मानंदनम वैराग्याम बुज भास्करम वंदे ब्रह्म कुलम। अरण्य कांड 1। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम मानस प्रारंभिक 3 ब्रह्म कुल वल्लभम विनय पत्रिका 12 ही है। शंकर का भजन करना मानो इन्हीं दोनों भूमिकाओं को उपलब्ध करना है। अतः जब यह कहा जाता है कि शंकर की भक्ति के बिना साधक को प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती शंकर बिना नर भक्ति न पावई मोरी उत्तरकांड 68 तब यही समझना चाहिए कि उसे भक्ति से पूर्व ज्ञान और वैराग्य की अनिवार्य साधना करनी है। तुलसी ने शैवोपासना को राम भक्ति में प्रमुख स्थान दिया है। रामचरितमानस के बाल अयोध्या अरण्य लंका तथा उत्तरकांडों के प्रारंभिक श्लोकों में उन्होंने शिव और राम दोनों की स्तुति की है। उनका मत है शिव पद कमल दिनहि रति नाही राम ही ते सपने हुन सुहाही। बालकांड 128। राम के मुख से भी कहलाते हैं शिव द्रोही मम भक्त कहावे सो नर सपने हु मोहि न भावे। लंकाकांड 5। राम भक्त को शिव द्रोही नहीं शिव भक्त होना ही चाहिए। बालकांड 166 में विष्णु भगवान नारद से कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस्पर्जी सजहु जनि कोरे जही पर कृपा न करही पुरारी तो न पाव मुनि भगति हमारी। निम्नांकित पंक्तियां भी इसी पाव की भाव की द्योतक हैं। शिव समको रघुपति व्रत धारी बिनु अभ तजी सती असि नारी पनु करी रघुपति भगति दृढ़ाई को शिव राम को शिव सम राम ही प्रिय भाई। बालकांड 128। शिव के समान भगवान को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। जिस पर शिव की कृपा नहीं होती उसे भगवत भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। शिव सेवा का फल ही राम के चरणों में अविरल भक्ति का होना है। शिव सेवा के फल सुत होई अविरल भगति राम पद होई। उत्तरकांड 170। शिव और विष्णु की निंदा सुनना तुलसी के मत में गोघात के समान पाप है। लंका कांड 48। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तेनर करही कलब भरी घोर नरक महाबास। लंका कांड 5। जो शिव द्रोही होकर राम भक्त बनता है और राम द्रोही होकर अपने को शिव भक्त कहता है वह घोर नरक में कल्प पर्यंत पड़ा रहेगा। हमें तो इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य होते हैं और ज्ञान तथा वैराग्य के अभाव में भक्ति भी व्यर्थ है। तुलसी शंकर को अपना गुरु मानते हैं। वस्तुतः वे तुलसी के ही नहीं विश्व भर के गुरु हैं। कहा जाता है कि व्याकरण के प्रारंभिक सूत्र वाङ्मय के मूलाधार अक्षर उन्हीं की डमरू ध्वनि से निस्सृत हुए हैं। ज्ञान राशि के स्रोत होने के कारण वे सबके लिए पूज्य हैं। विप्र उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। भारत वर्ष में ब्राह्मण वर्ग इसी हेतु शैवोपासना प्रधान वर्ग है। ज्ञान और वैराग्य उसकी विशिष्ट संपत्ति है। इन्हीं दोनों साधनों की ओर संकेत तुलसी की निंदा की चौपाइयों में भी है। भक्ति के साधन कहाँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति यही कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। अरण्य कांड 28। किसी वस्तु पर विश्वास जमाने के लिए उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। प्रेम विश्वास के बिना नहीं होता और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। अतः भक्ति की सुदृढ़ता के लिए ज्ञान की उपादेयता निश्चित है। जाने बिनु न होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। उत्तरकांड 136। जाने बिनु भगति न जानी बहु तिहारे हाथ बिना पत्रिका 251। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुलसी ने गुरु और वैराग्य को साधन बना दिया है। बिनु गुरु होई की ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु। उत्तरकांड 136। एक स्थान पर उन्होंने धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान की सिद्धि मानी है। यह ज्ञान मुक्ति प्रदाता है। धर्म से विरति योग से ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अरण्य कांड 28। विरागी का लक्षण लिखते हुए करते हुए तुलसीदास लिखते हैं ज्ञान मान जहाँ एक और नाही देख ब्रह्म समान सब माही कही तात सो परम विरागी तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। अरण्य कांड 27। जिसमें ज्ञान का अहंकार नहीं जो सब में समान रूप से ब्रह्म को व्याप्त देखता है जिसने तृण के समान सिद्धियों और तीनों गुणों को त्याग दिया है वही परम वैराग्यवान है। तुलसी ज्ञान विज्ञान आदि को भक्ति के अधीन और भक्ति को इनसे स्वतंत्र मानते हैं। सो स्वतंत्र अवलंबन आना से ही अधीन ज्ञान विज्ञान। अरण्य कांड 28। ये नारद भक्ति सूत्र के अनुसार है। साधन परिचय 1। सत्संग। सत्संग और भक्ति का घनिष्ठ संबंध है। दोनों भव ताप का शमन करने वाले हैं। सत्संग मंगल का मूल है। यदि अन्य साधन फूल हैं तो सत्संग उनका सिद्धि रूप फल है। सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बालकांड 8। सत्संगति गंगा की धारा है। गंगा में जो जल मिलता है वह गंगा जल ही बन जाता है। इसी प्रकार जो सत्संग करता है वह भी संत बन जाता है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान जो जल पर जो जन मिले कीजे आपु समान। दोहावली 363। तुलसी ने सत्संग की महिमा अनेक बार लिखी है। संत समागम के समान उन्हें कोई अन्य लाभ दिखाई नहीं देता। संतों को वे अनंत भगवान के समान ही समझते हैं। जाने तो संत अनंत समाना। उत्तरकांड 178। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं विनय पत्रिका 54। ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही संभव है। सत्संग से साधक के समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल परिय सत्संगा। उत्तरकांड 85। संतों का पथ मोक्ष का पथ है। यह कामियों के पथ से भिन्न है जो बंधन की ओर ले जाता है। संत पथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। उत्तरकांड 56। संत किसी को हानि नहीं पहुंचाते। साधु से होई न कारज हानि। सुंदरकांड 7। उनका संसर्ग जिस सुख का उत्पादक है उसकी तुलना स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी नहीं की जा सकती है। तुलसी लिखते हैं सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुंदरकांड 5। बिनु सत्संग न हरि कथा देही बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। उत्तरकांड 85। सत्संग में जो हरि कथा चलती है वह ज्ञान की जनक है और मोह को दूर करती है। विरति विवेक भगति दृढ़ करणी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरणी। उत्तरकांड 34। मोह विराग का विपरीत भाव है। भगवत भक्ति इस प्रकार इस मंगलमय सत्संग से सुलभ हो जाती है और साधु संतों की कृपा से सुख निदान हरि के दर्शन प्राप्त होते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास लिखते हैं, संसार समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिन मिलहिन करिय उपाय अनेक। विनय पत्रिका 203। ज्ञान, ज्ञान दो प्रकार का है, शब्द बोध और तत्व बोध। पूरे शब्द बोध की निंदा सभी साधकों ने की है। वाक्यों के ज्ञान में अत्यंत निपुण व्यक्ति भी संसार से पार नहीं हो सकता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। विनय पत्रिका 123। जैसे दीपक दीपक चिलाने से घर का अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोरा वाक्य ज्ञान तत्व बोध नहीं करा सकता। जब तक तत्व बोध नहीं होता तब तक भव सागर से पार पाना अशक्य है। ज्ञान का परिणाम अद्वैत भावना है। द्वैत अज्ञान संबद्ध है। द्वैत भाव ही माया के परिवार मद क्रोधादि का जनक है। द्वैत बुद्धि बिन क्रोध किमी, द्वैत की बिन अज्ञान। उत्तरकांड 187। अतः जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक जीव माया के बंधनों में ही ग्रसित रहता है। विवेक के जागृत होते ही मोह भ्रम आदि भाग जाते हैं और भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अयोध्या कांड 94। नीलांकित चौपाई में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उरछाई। उत्तरकांड 210। जो व्यक्ति भगवत भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं उनकी तुलना उनकी तुलसी ने अवश्य निंदा की है। ऐसे व्यक्तियों को वे जड़ कहते हैं जो घर की कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते फिरते हैं। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जानी। लंका कांड 670। जे असि भगति जानि परिहरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जे ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर पहलागी। उत्तरकांड 194। कर्णधार के बिना जलयान की जो दशा होती है वही दशा राम के प्रेम के बिना ज्ञान की होती है। भक्तिहीन ज्ञान भगवान को प्रिय नहीं है। तुलसी लिखते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमि जल जानु। अयोध्या कांड 278। ज्ञान के अभिमान में मस्त मानव भगवत भक्ति का निरादर करते हैं, अतः वे सुर दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी अधपतित होते हैं। यथा जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरण्य भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। उत्तरकांड 30। तुलसीदास की सम्मति में गुरु और हरि की कृपा या करुणा के बिना विमल विवेक उत्पन्न नहीं होता और निर्मल ज्ञान के अभाव में कोई भी प्राणी संसार के भयंकर समुद्र को पार नहीं कर सकता। यथा तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनो विमल विवेक न होई, बिनो विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विनय पत्रिका 115। यह ज्ञान संसार में अत्यंत दुर्लभ है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। उत्तरकांड 194। ज्ञान की प्राप्ति में श्रवण और मनन विशेष रूप से सहायक बनते हैं। भक्ति के क्षेत्र में राम की कथा तथा उनके शील स्वभाव का श्रवण, तदुपरांत उसको समझना, मनन करना और अंत में उसे हृदय में स्थान देना, अपना बना लेना भगवान की प्रसन्नता के वरण के लिए आवश्यक समझे गए हैं। यथा सुनी सीतापति शील स्वभाव, समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाओ। विनय पत्रिका 100। स्वामी को स्वभाव कहो तो जब उर आनी है। विनय पत्रिका 135। कर्म, ज्ञान के अनुकूल कर्म होना चाहिए। कर्म के अभाव में ज्ञान की सार्थकता चिंतित है। ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उपदेश देने में कुशल व्यक्ति तो यहाँ अनेक मिल सकते हैं, पर जो उसके आधार पर स्वयं आचरण करते हों ऐसे व्यक्ति अत्यल्प हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरण ही ते नर न खनेरे। लंका कांड 100। विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने ही भले और बुरे कर्म यहाँ अश और यश और अपयश की संपत्ति के जनक है। सुख दुख का प्रदाता यहाँ अपना ही कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अयोध्या कांड 220। भल अनभल निज निज कर सूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। बाल कांड 11। काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अयोध्या कांड 93। रामचरित मानस के लक्ष्मण इस कर्म के मर्म को भली भांति पहचानते हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना प्रमादी और आलसी प्राणियों के मन का आधार है। लक्ष्मण जैसे सतत कटिबद्ध कार्य तत्पर प्राणवान व्यक्तियों का नहीं। कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुंदरकांड 54। कर्म और भाग्य एक दूसरे में अनुसूत है। कर्मों का विभाग भाग्य है और भाग्य तदनुकूल कर्मों का प्रेरक है। अथवा जहाँ तुलसीदास भवितव्यता अथवा विधाता लिखित अंकों की अमृतता का उल्लेख करते हैं, वहाँ कर्म विभाग का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बालकांड 75, 121, 151, 188, 205। सोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क पढ़ा वही साखा। रामचरित मानस का निर्माण कर्म पक्ष से विरत या उदासीन करने के लिए नहीं, कर्तव्य पराण बनाने के लिए हुआ है। तुलसी भोगवाद नहीं पुरुषार्थवादी है। उनके इष्ट देव धनुर्धर राम है, जो घोर से घोर आपत्तियों के बीच भी कर्म की ज्योति शिखा प्रज्वलित रखने वाले हैं। पर तुलसी पूरे कर्मवादी के समर्थक नहीं है। वे भक्ति विहीन कर्म के महत्व को स्वीकार नहीं करते। जो कर्म भगवान को ध्यान से हटाकर और उन्हें समर्पित किए बिना ही किए जाते हैं, हरे ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, अरण्यकांड 39, वे उनकी सम्मति में व्यर्थ हैं। साधन क्षेत्र में केवल कर्म को वे उत्थान कारक नहीं मानते। उनका निश्चित मत है, कर्म की चित्तीय जानी तानी चित्त चाहत कुटिल मल ही मलत होयो। विनय पत्रिका 245। छूटे मल की मल ही क्या धोए, भृत की पाव को बारी बिलोए। उत्तरकांड 72। कर्म रूपी कीचड़ कोसी के द्वारा धोया नहीं जा सकता। तब भगवत भक्त शुभ एवं अशुभ फल देने वाले कर्मों का परित्याग कर देते हैं। तुलसी के ही शब्दों में, त्याग ही कर्म सुखा शुभदायक, भजन ही मोही सुर नर मुनि नायक। उत्तरकांड 64। सुर नर मुनि आदि सभी साधक कर्मों को बंधन का हेतु समझकर छोड़ देते हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। जिस वेद की तुलसी बार बार दुहाई देते हैं, वह उनके कर्म सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 2 के अनुसार कर्म मार्ग निरंतर पालनीय है। उस पर सतत अनवरत चलता हुआ प्राणी ही कर्म से अलिप्त हो सकता है। वेद की शिक्षा गीता के निष्काम कर्म की महत्ता के समान है। कर्म करो, पर न उसमें आसक्ति रखो और न फल की आकांक्षा करो। यह सिद्धांत आर्य संस्कृति में प्रारंभिक काल से ही मान्य रहा है। साधक असत कर्मों के परित्याग एवं सत्कर्मों के स्वीकरण द्वारा अपने निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति करता है। सिद्धि की उच्च भूमिका में पहुँचने पर साधक के सभी कर्म प्रभु प्रेरित हो जाते हैं। उनके साथ कर्म करते हुए भी कोई संपर्क शेष नहीं रहता। अतः कर्म को कीचड़ कहना और उसे मल से मल को धोने की उपमा देना कम से कम साधना की दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। तप तपश्चर्या से दुख दोष दग्ध होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और सुख संचारिणी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति उत्पन्न होती है। प्रत्येक रचनात्मक एवं रक्षणात्मक कार्य के मूल में तप का ही हाथ रहता है। संहार भी तपोबल की अपेक्षा रखता है। निखिल सृष्टि तप के आधार पर ही स्थित है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राधा। तप बल सभु करहि संहारा, तप बल शेष धरय महि भारा। बालकांड 97। तप आधार सब सृष्टि भवानी, बालकांड 193। ब्राह्मण तप से ही बलवान बनता है। इस बलवती अवस्था में उसके शाप से कोई बच नहीं सकता। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। बालकांड 195। तप के प्रभाव को छिपा कर रखना चाहिए, अन्यथा उसका फल नष्ट हो जाता है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल है तब ही जब करिय दुराओ। बालकांड 198। रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस भी तपस्या करके विकट शक्तिशाली बन गए थे। अतः सत्पुरुष यदि तप करेगा तो सत के क्षेत्र में उसे अवश्य उत्कर्ष प्राप्त होगा। वैराग्य तप के साथ वैराग्य का घनिष्ठ संबंध है। साधना में तप के दोनों अंग अभ्यास और वैराग्य निरंतर चलते रहते हैं। साधक माया मोह तथा ममता से वैराग्य करता है और प्रभु से प्रेम करने के अभ्यास में संलग्न होता है। सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त प्राय सभी जीव मिथ्या माया को सत्य मानकर जीवन यापन करते हैं। भगवान की यह माया अत्यंत बलवंत है। बड़े से बड़े ज्ञानियों तक को यह अपने जाल में फांस लेती है। शिव और ब्रह्मा जैसे देव तक जब इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तब सामान्य जीवों की तो बात ही क्या है। उत्तरकांड 86, 87, 102। माया का परिवार बुद्धि से लेकर शरीर तक व्याप्त है। काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार इसके पुत्र हैं। साधक को इन सबके साथ युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध का नाम ही वैराग्य है। माया की सेना के साथ इस वैराग्य रूपी युद्ध में सफलता उसी के हाथ लगती है जिस पर राम कृपा करते हैं। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहु जोदाया। किष्किंधा कांड 24। इसका एकमात्र आधार यही है कि चराचर को वश में रखने वाली माया प्रभु की दासी है और उन्हीं से भय मानती है। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय माखे। बालकांड 232। सो दासी रघुबीर कह समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रोपी। उत्तरकांड 103। भक्ति भी जीव को माया से छुड़ाने वाली है। बालकांड 234। क्योंकि राम भक्ति के अनुकूल रहते हैं और माया इस भक्ति से डरती रहती है। उत्तरकांड 196। काम क्रोधादि के दम रूप कूप में पड़े हुए गृहस्थ जीव भगवान को जानने में असमर्थ हैं। काम क्रोध मद लोभ रस गृहस्थ दुख रूप से किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। उत्तरकांड 106। माया ने उन्हें अंधा कर रखा है। साधक ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्रों द्वारा ही इस विकराल तम कूप को देख पाता है। ज्ञान और वैराग्य के अभाव में तो माया का मोह से बुरी तरह जकड़े रहता है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बालकांड 157। यही घोर यातनाओं से भरा हुआ नरक है। काम क्रोध मध लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुंदरकांड 39। जैसे माया के पास सेना और सेनापति है, वैसे ही साधक के पास भी। लंकाकांड 102 में तुलसी ने जिस विजय प्रद रथ का रूपक बांधा है, उसमें शौर्य धैर्य सत्य शील बल विवेक दम परोपकार क्षमा कृपा समता भक्ति वैराग्य संतोष। बिनु संतोष न काम न साही, राम अछत सुख सपने हु नाही। उत्तरकांड 138। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। उत्तरकांड 137। दान प्रगट चारि पद धर्म के कली मह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। उत्तरकांड 135। श्रम यम नियम विप्र और गुरु की पूजा तथा निर्मल और निश्चल मनोरथ के विविध अंगों अस्त्र शस्त्रों कवच तथा सारथी के रूप में वर्णित हुए हैं। वैराग्य को यहाँ ढाल विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचारी। उत्तरकांड 207। यहाँ भी वैराग्य ही ढाल है और भक्ति को सारथी माना गया है। साधना के इन समस्त अंगों को सैनिकों तथा युद्ध संबंधी अन्य सामग्री के रूप में वर्णित करके कवि ने भक्ति के साधन पक्ष का सुंदर निरूपण किया है। माया रूपी शत्रु पर इन्हीं साधनों द्वारा विजय प्राप्त होती है। राम की कृपा तो प्रमुख है ही, पर वैराग्य जो विषयों की आशा को दुर्बल करता है, सुमति को बढ़ाता है और मन को निरोग तथा स्वस्थ बनाता है, राम भक्ति तक पहुँचाने के लिए निस्संदेह एक अमोघ साधन है। जानिए तब मन विरुद्ध गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति छुदा बाढ़ नित नई विषय आस दुर्बलता गई। उत्तरकांड 210। राम का निवास जिस हृदय में होता है उसकी विशेषताएं लिखते हुए तुलसी ने अयोध्या कांड 130 में सूर्य गुरु और द्विज की पूजा तीर्थ यात्रा जप तप तर्पण और हवन जैसे साधनों का भी उल्लेख किया है और उन्हें भक्तों के लक्षणों के अंतर्गत स्थान दिया है। विनय पत्रिका 203 में निम्नांकित साधनों का वर्णन किया गया है। 1. अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा करना। 2. प्रेम भाव। 3. अद्वैत मत। 4. त्रिगुणातीत स्थिति। 5. अंतःकरण चतुष्टय। 5. तत्वों के पंच गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा षड वर्ग काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य का परित्याग। 6. सप्त धातु निर्मित शरीर को क्षणभंगुर समझकर परोपकार में संलग्न रहना। पर हित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। उत्तरकांड 64। 7. प्रभु को अष्टधा प्रकृति से परे समझना। 8. आत्मज्ञान। 9. इंद्रिय संयम। 10. मन दमन। 11. दान। 12. जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति में निरंतर भगवत भजन में निरत रहना। 13. चतुर्दश भुवनों में प्रभु की व्याप्ति का अनुभव और 14. प्रेमा भक्ति में मग्न होकर हरि की आनंदमयी लीला तथा उस रस का आस्वाद लेना। इन साधनों में संख्या 3, 4, 7 और 8 ज्ञान परक, संख्या 1, 5, 6, 9, 10 और 11 कर्म परक तथा संख्या 2, 12, 13 और 14 भाव परक हैं। इंद्रिय संयम और मन दमन का अंतर्भाव तप में हो सकता है जो कर्म की अपेक्षा रखता है। काम का विपरीत ब्रह्मचर्य है जो तप का ही एक रूप है। क्रोध से विपरीत दया है जो भाव के अंतर्गत है। लोभ का विपरीत संतोष, मोह का विपरीत वैराग्य, मद का विपरीत नम्रता और मात्सर्य का विपरीत मैत्री है। ये सभी सद्गुण संपादनीय और दुर्गुण परित्याज्य हैं। इन साधनों में शरीर से लेकर बुद्धि तक प्रकृति जन्य सभी अंगों का परित्याग, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर उन्हें जो स्वरूप अनुरागे, विनय पत्रिका 156। सभी साधकों का यही अनुभव है कि देह जनित विकारों का परित्याग किए बिना आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मज्ञान की उपलब्धि और भगवत भजन द्वारा हरि लीला की अनुभूति का वर्णन किया गया है। विनय पत्रिका पद संख्या 172 और 205 में भी हरि भक्ति तक पहुंचाने वाले साधनों का वर्णन है। उन सब का समावेश ऊपर की सूची में हो गया है। इन समस्त साधनों का फल तुलसी की सम्मति में रामचरण अनुराग है। 6. श्रद्धा विश्वास। बालकांड के प्रारंभिक द्वितीय श्लोक में ही गोस्वामी जी ने भवानी और शंकर की वंदना श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक रूप में की है, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी स्वांतस्थ ईश्वर का साक्षात नहीं कर पाते। श्रद्धा धर्म का मूल है और तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। भक्ति के क्षेत्र में सात्विक श्रद्धा ही फलवती होती है। उत्तरकांड 98 के ज्ञान दीपक के वर्णन में सर्वप्रथम तुलसी ने सात्विक श्रद्धा को ही उसका मूलाधार बनाया है। आगे दोहा 210 में व्याधियों से ग्रसित जीव के उद्धारार्थ उन्होंने भक्ति को संजीवनी जड़ी तथा श्रद्धा को अनुपान लिखा है। श्रद्धा के साथ सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास तो होना ही चाहिए। तुलसी लिखते हैं, विश्वास परी सब आस परी हरी, दास सब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सोई स्मरा महे। उत्तरकांड 30। विश्वास के साथ अन्य समस्त आशाओं को छोड़कर जो भगवत भजन करते हैं वे अनायास संसार सागर को पार कर जाते हैं। तुलसी ने नीचे लिखे दोहे में विश्वास को शांति और आनंद का मूलाधार माना है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। उत्तरकांड 138। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते और बिना भगवान के द्रवित हुए उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवत कृपा से ही जीव को विश्राम, सुख, शांति या आनंद उपलब्ध होता है। विश्वास प्रत्येक सिद्धि के लिए अनिवार्य साधन है। कवनी उस सिद्धि की बिनु विश्वास। उत्तरकांड 138। 7. प्रेम। साधन सभी श्रेष्ठ हैं, पर जिस साधन से राम द्रवित होते हैं वह प्रेम है। अन्य समस्त साधनों का फल भी राम चरणों में अविचल अनुराग का होना, जप तप व्रत मख सम दम दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई खेनमा। उत्तरकांड 148 ही है। राम न हमारी विद्या को देखते हैं, न कुल को, न उनकी दृष्टि हमारी जाति पर जाती है, न आचरण पर, उन्हें तो केवल भक्त का प्रेम प्रिय है। योग, जप, ज्ञान, वैराग्य आदि राम को प्राप्त नहीं करा सकते। ये साधन अवश्य है, परंतु वह सोपान जिस पर चढ़कर भगवान के दर्शन होते हैं प्रेम ही है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। उत्तरकांड 86। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हु जो जान निहारा। अयोध्याकांड 138। परिवा प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूर, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। विनय पत्रिका 203। आचरण पर दम्भ का आवरण भी डाला जा सकता है, ज्ञान माया के परिवार क्रोधादि का आखेट बन सकता है, वैराग्य अभिमान को जन्म दे सकता है, योगी सिद्धियों के झमेले में पड़ जाता है, पर प्रेम के अतिरिक्त भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है, वह मन, वचन, कर्म द्वारा भगवान के पदारविंदों में प्रेम करता है। मन वच क्रम मम भगति अमाया। उत्तरकांड 67। यह प्रेम ही सर्वत्र समान रूप से व्याप्त प्रभु को भक्त के समक्ष प्रकट करने वाला है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बालकांड 217। सत्य स्नेह का संबल लेकर चलने वाला भक्त भगवान को अवश्य प्राप्त करता है। स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों से रहित प्रभु प्रेम कर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नाम के चारों फलों का भी फल है। स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम स्नेहु, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत एहु। दोहावली 60। योग, जप, दान, तप, व्रत, यज्ञ तथा नाना नियमादि जहाँ विफल हो जाते हैं, वहाँ केवल प्रेम ही प्रभु कृपा को संपादित करने में सफल होता है। उमा योग, जप, दान, तप, नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं कर ही तस, जस ने केवल प्रेम। लंकाकांड 148। राम के चरणों में प्रेम करने वाला भक्त काल अथवा मृत्यु के धर्म से व्याप्त नहीं होता। काल धर्म नहीं व्याप ही देही, रघुपति प्रीति चरण अति देही। उत्तरकांड 166। और समस्त भोगों को रोगों के समान समझकर छोड़ देता है। विनय पत्रिका 127। जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है। तुलसी ने व्यास की भांति अहिंसा को परम धर्म कहा है और पर निंदा को सबसे बड़ा पाप। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन घरीसा। उत्तरकांड 208। राम कृपा। ज्ञान, विराग, श्रद्धा, विश्वास आदि गुण भगवत भक्ति के साथ ही शोभा देते हैं। भक्ति विरहित गुण तो वैसे ही है जैसे नमक के बिना विविध प्रकार के व्यंजन। यद्यपि इन सद्गुण रूपी साधनों द्वारा भक्ति सुलभ हो जाती है, पर साधनों के संपादन में जो कष्ट होता है वो भगवत कृपा से ही दूर होता है। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। उत्तरकांड 129। प्रभु का प्रसाद ही साधन पथ को प्रशस्त और सुगम करता है, जिस पर प्रभु कृपा के पात्र वेले व्यक्ति ही चल पाते हैं। विशुद्ध संतों के दर्शन की कृपा दृष्टि से ही संभव होते हैं। उत्तरकांड 98 तथा सुंदरकांड 8। मायाकृत मिथ्या भेद करोड़ों उपाय करने पर भी भगवान की कृपा के बिना दूर नहीं होते। उत्तरकांड 72, 103, 115। माया मोह में ग्रसित जीव उसी की कृपा से निस्तार पाता है। किष्किंधा कांड 5। भक्ति भावना भी उसी की कृपा का फल है और आत्मज्ञान उसी प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। किष्किंधा कांड 9, जो अंत में परमात्मा के साथ अद्वैत स्थिति करा देता है। अयोध्या कांड 128। प्रभु जिस पर अनुकूल हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सुंदर कांड 34। दैहिक, जैविक और भौतिक त्रिविध तापों पर विजय सुंदरकांड 49 प्राप्त करता है। प्रभु की कृपा रूपी कालिका उसके अघ रूपी असुरों को खा जाती है। विनय पत्र का 128। उसके लिए गरल अमृतमय, शत्रु मित्रमय, सिंधु गोफर वस आग्नेय दाहकता जल की शीतलता में और भारी सुमेरु पर्वत रेणु में परिणत हो जाते हैं। सुंदरकांड 6। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे निरंतर शुभ कुशल और कल्याण की प्राप्ति होती है। मनुष्य मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। वह गुण सागर विनय तथा विजयी बनता है और उसका सुयश तीनों लोकों में फैल जाता है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, सासु सुजस त्रैलोक उजागर। सुंदरकांड 31। राम का आश्रय। संसार स्वप्न के समान मिथ्या है, केवल भगवान ही सत्य है। संसार की वस्तुएं सदैव और सर्वत्र साथ नहीं रह सकती, ये क्षण स्थायी है। अतः इनका सहाय ग्रहण करना थोड़े दिनों तक के लिए तो मेरी स्थिति को स्वल्प मात्रा में संभाल सकता है, परंतु मेरी समग्र स्थिति को संपूर्ण मात्रा में और सदैव के लिए संभाले रखना इनकी शक्ति के बाहर है। यही समझकर साधक ऐसी शक्ति की शरण में जाना चाहता है जो शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है और दयालु है। बाघ के पौधे सींचने पर भी कुंडलाते रहते हैं, परंतु राम के आश्रय में पर्वतीय पौधे सदैव हरे भरे बने रहते हैं। तुलसी बिरवा बाघ को सींचत हूँ कुंडलाए, राम भरोसे जोर है पर्वत पर हरियाए। प्रभु के करुणा वरुणालय स्वभाव को समझकर साधक इसी हेतु सदैव उन्हीं के आश्रय में रहना चाहता है। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। वे आश्रयदाता हैं, मैं आश्रित हूँ। वे दाता हैं, मैं दीन भिक्षुक हूँ। वे स्वतंत्र हैं, मैं प्रकृति के पार्श्वों में जकड़ा हूँ। प्रभु कोमल हैं, मैं कठोर हूँ। वे ही मेरी मोह विश्रंखलता को तोड़ देते हैं। सब प्रकार मैं कठिन मृदुल हरि दृढ़ विचार दिए मोरे, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छुटी ही तुम्हारे छोरे। विनय पत्रिका 114। इस प्रकार की अनुभूति में मग्न भक्त सदैव अपने राम का पल्ला पकड़े रहता है। वह उन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहता। वह राम को ही अपना जनक जननी गुरु बंधु सुहृद पति तथा हितकारी समझता है। जनक जननी गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी। विनय पत्रिका 113। तुलसीदास कातों कहे, तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मात पितै हो। विनय पत्रिका 270। लौकिक माता पिता का संबंध तो मिथ्या टांकों से टका है। रही देवों की बात तो वे भी स्वार्थी हैं और मोल लेकर दूसरों के हाथ बेच देने वाले हैं। फिर उसी का आश्रय क्यों न ग्रहण करें जो समस्त आश्रयों का आश्रय है, जिससे बढ़कर यहाँ अन्य कोई भी अवलंबन नहीं है। विनय पत्रिका 153, 163, 216, 277। कवितावली उत्तरकांड 12। इन साधनों से संपन्न भक्त जहाँ भी रहेगा वहाँ एक योजन तक अविद्या व्याप्त नहीं हो सकेगी। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख भी उस भक्त को दुखी नहीं कर सकेंगे। हरि प्रसाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। यही आश्रम तुम बसव कुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। उत्तरकांड 191। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम ही न व्यापी ही काऊ, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उत्तरकांड 192। पर इस साधन पद पर वही पैर रखता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है। अति हरि कृपा जासु पर होई, पाहु देय देही ये ही मार्ग सोई। उत्तरकांड 221। भक्ति के प्रकार। भाव भक्ति। भक्ति साधन तथा साध्य विविध रूप वाली है। ज्ञान वैराग्य आदि साधनों द्वारा यह साध्य जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। उत्तरकांड 218 बनती है और भगवत प्राप्ति के लिए अंतिम साधन रूप है। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छित आवे बरियाई। भगति करत बिनो जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। उत्तरकांड 204। इन दो रूपों के अतिरिक्त भक्ति का एक तीसरा रूप भी है जिसमें भक्ति स्वयं साधन तथा साध्य रूपा है। भक्ति भक्ति के लिए यह सिद्धांत भी तुलसी को मान्य है। मोक्ष सुख की निरंतरता हरि भक्ति द्वारा साध्य होती है। भगवत भजन के बिना मोक्ष द्वारा प्राप्त सुख अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। ऐसा विचार करके भगवत भक्त मुक्ति का भी तिरस्कार करके भक्ति भाव में ही लीन रहना चाहते हैं। भगवान को भी ऐसे ही भक्त प्रिय हैं जो निष्कपट रूप से भक्ति भाव पूर्वक उनका भजन करते हैं। भगति भाव भजी कपट सजी, मोहि परम प्रिय सोई। उत्तरकांड 132। राम जब भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे तो उनकी भाव भक्ति देखकर आनंद से तृप्त हो गए। सुनी मुनि वचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद अखाने। अयोध्याकांड 109। तुलसीदास की सम्मति में भाव वस्य भगवान, सुख निदान करुणा भवन, सजी ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। उत्तरकांड 143। सुख निधान करुणा भवन भगवान भाव भक्ति के वशीभूत हैं, अतः ममत तो मद और मान को छोड़कर सदैव सीता रमन राम के भजन में लीन रहना चाहिए। भाव भक्ति का ही दूसरा नाम प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति रूपी जल ही साधक के अभ्यंतर मल को धो सकता है। राम चरण अनुराग नीर, बिनु मल अति नाश न पावे। विनय पत्रिका 82। श्रुति के आधार पर संतों ने जिस कर्म कांड का विधान किया है वह तो स्वयं मल रूप है। मल से मल का धोया जाना असंभव है, इसलिए वेदादि शास्त्रों के श्रवण मनन तथा जप तप नियम योग कर्तव्य परायणता ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आदि का सुंदर सुखद परिणाम प्रेमा भक्ति ही होना चाहिए। उत्तरकांड 72। प्रेमा भक्ति का धनी भक्त ही सर्वज्ञ है, गुणज्ञ है, पृथ्वी का भूषण है, पंडित है, दानी है, धर्मनिष्ठ और कुल रक्षक है। वही नीति निपुण है, चतुर है, वैदिक सिद्धांतों का मर्मज्ञ है, कवि है, कोविद है और रणधीर है। वह कुल धन्य है जिसमें ऐसा जगत पूज्य पवित्र विनयशील राम भक्ति परायण भक्त उत्पन्न होता है। उत्तरकांड 219। प्रेमा भक्ति सुलभ है, इसका मार्ग सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। उत्तरकांड 68। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, न इसमें योग करना पड़ता है, न यज्ञ, न जप तप और न उपवास। आवश्यकता है केवल सरल स्वभाव की, कुटिलता रहित मन की और जो मिले उसी में संतुष्ट रहने की। वैर विग्रह आशा त्रास से रहित समस्त दिशाओं में सुख का अनुभव करने वाला सर्वारम्भ परित्यागी अनिकेत अमानी अनघ अरोष विज्ञानवान सत्संगी स्वर्ग और अपवर्ग के विषयों को तृणवत समझने वाला भक्ति पक्ष का आग्रही दुष्ट तर्क से दूर ममता मद मोह से शून्य तथा भगवान नाम गुण ग्राम में निरत भक्त जिस परमानंद संदोह का अनुभव करता है उसे उसके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। उत्तरकांड 69। तुलसी का हृदय सी प्रेमा या भाव परक भक्ति पर मुक्त है। प्रेम के दो पक्ष हैं, या तो प्रभु मुझसे प्रेम करे या मैं प्रभु से प्रेम करूं। दुहावली 78। दूसरा पक्ष ही भक्त के हाथ में है और वही सुगम है। प्रथम पक्ष के लिए तो न जाने कितने पुण्य कर्मों का संग्रह करना पड़ेगा। ममता को हटा देना कठिन है पर उसे राम के साथ संबद्ध कर देना सरल है। क्या करूं ममता राम सौ, क्या ममता पर घेलू। दोहावली 79। राम मेरे हैं, मैं राम का हूं, यह विश्वास ही तुलसी की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। वे जन्म जन्मांतरों तक इसी विश्वास में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी आकांक्षा एक ही है, भगवान राम के चरणों में अटल अनुराग रखना। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। दोहावली 91। इस अनुराग का अनुराग के अतिरिक्त वे और कोई फल नहीं चाहते। तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरि जाहु। दोहावली 92। इस प्रेम को उन्होंने सेवक सेव्य भाव का रूप दिया है और लिखा है सेवक सेव्य भाव बिनु भव तरिय उर्गारी भजहु राम पद पंकज अस्य सिद्धांत विचारी। उत्तरकांड 204। लोक में प्रेम के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उन सबको अपनाया है और अपनी अपनी भाव वृत्ति के अनुकूल उनमें विशिष्टता भी स्थापित की है। किसी की रुचि दाम्पत्य प्रेम की ओर गई है, किसी की वात्सल्य स्नेह की ओर, तो किसी की सख्य भाव की ओर। तुलसीदास भाव को स्वीकार करते हैं, उनमें उन्हें उसी में कल्याण दिखाई देता है। तुलसी ने भगवान की बाल रूप में उपासना करने का भी वर्णन किया है। इस वात्सल्य स्नेह की अभिव्यक्ति वे शिव, लोमश, काकभुषुंडी तथा मनु शत्रुपा के मुख द्वारा कराते हैं, जो सभी तपस्वी हैं। तुलसी के समय में इस बाल रूप पूजा का विधान आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग में प्रचलित हुआ था। आचार्य वल्लभ विष्णु स्वामी के संप्रदाय से संबंध रखते थे, जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। रुद्र का अग्नि के साथ संबंध है और महाप्रभु वल्लभाचार्य अग्नि के अवतार कहे ही जाते हैं। काकभुषुंडी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष्ट कोटि सतकामा। उत्तरकांड 110। यहाँ काकभुषुंडी के रूप में तुलसी ने मानो आचार्य वल्लभ को ही उपस्थित कर दिया है। काकभुषुंडी को राम के बाल रूप की उपासना करने का विधान मुनि लोमश ने बताया था, यथा बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, जो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। उत्तरकांड 190। काकभुषुंडी आगे कहते हैं, जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाय रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहूं, पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवो खग भूपा। उत्तरकांड 192। इसी बाल रूप उपासना का वर्णन महादेव ने पार्वती जी के समक्ष किया है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बालकांड 136। मनु भी अपनी तपस्या के फल स्वरूप भगवान से यह वरदान मांगते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, देखहि हंसो रूप परिलोचन, कृपा करहु कंतार अति मोचन, जो भुसुंडी मन मानुष हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। बालकांड 174। सुत विषयक तव पद रति होउ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोउ। बालकांड 179। तुलसी ने यहाँ बड़ मूढ़ शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन से किया है? क्या भगवान की बाल रूप में उपासना करना मूर्खता का कार्य है? यदि ऐसा है तो दाम्पत्य अथवा सख्य भाव की उपासना और भी अधिक मूर्खतापूर्ण कही जाएगी। शत्रुपा के प्रति मनु का यह कथन कहीं ध्वनि द्वारा बाल कृष्ण के उपासक पुष्टि मार्ग वालों पर तो मूर्खता का दोषारोपण नहीं कर रहा है? पुष्टि मार्गी आचार्यों अथवा कवियों ने तो कहीं भी तुलसी की सेवक से वे भावना पर ऐसा व्यंग नहीं किया। वे महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेह की पराकाष्ठा को सदैव स्वीकार करते रहे हैं, पर तुलसी जैसे साधक को ऐसे आरोपों से पृथक ही रखना चाहिए। उन पर पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति का प्रभाव भी पड़ा है, ऐसा रामचरितमानस से ही सिद्ध है। अनन्यता। तुलसी का साधक राम की अनन्य भक्ति का आकांक्षी है, उसके स्वामी राम है। राम के स्थान पर वह किसी अन्य देव को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। कलयुग में सतयुग का योग विज्ञान, त्रेता के यज्ञ और द्रौपद के पूजा विधान कृत कार्य नहीं होंगे। इसमें तो भव संतरण का आधार एक ही है, राम का निश्चय विश्वास पूर्वक भजन। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। उत्तरकांड 164। सूर्य की पीठ की ओर से और अग्नि की छाती की ओर से सेवा करनी चाहिए, पर स्वामी की सेवा सभी भांति छल छोड़कर करनी चाहिए। भानु पीठ से और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। अनन्य गति वाला सेवक ही राम को प्रिय है, यद्यपि वे समदर्शी हैं। जो साधक अपने को सेवक और चर अचर जगत रूप भगवान को अपना स्वामी समझता है, जिसकी बुद्धि इस पद से कभी विचलित नहीं होती, वही भगवान का अनन्य भक्त है। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ, सो अनन्य आके असि मति न तरह हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किष्किंधा कांड 53। अगस्त्य मुनि का शिष्य सुतीक्ष्ण भगवान का ऐसा ही अनन्य भक्त था। उसका विश्वास था कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अरण्य कांड 19। योग यज्ञ सत्संग आदि कुछ भी न हो, पर जो अन्य सबकी शरण छोड़कर एक राम की शरण ग्रहण करता है, वह उस करुणा निधान का उनकी आदत के अनुकूल अवश्य प्रिय बनेगा। दोहावली के चातक संबंधी 34 दोहे चातक 34 अनन्य भक्ति के उदाहरण हैं। तुलसी लिखते हैं, तीन ही लोक तिहु काल जस, चातक ही के मास, तुलसी प्यास न दीनता सुनी दूसरे नाथ। उपल बरसी गरजत तरसी तारत पुलिस कठोर सितव की चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। 283 जीव चराचर जहां लगे है सबको हित मेह तुलसी चातक मन बस्यो घन सो सहज स्नेह। 294 बध्यो बधिक परियो पुण्य जल उलटी उठाई चोच तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। 277 धन्य है चातक त्रिलोक और त्रिकाल में एकमात्र तू ही यशस्वी है क्योंकि तेरे दैन्य को मेघ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वामी नहीं सुनता। मेघ की ओर से चाहे वर्षा हो चाहे ओले गिरे चाहे वज्रपात हो परंतु चातक समस्त आपत्तियों को सहन करता हुआ भी किसी अन्य की ओर दृष्टि नहीं ले जाता। चातक के मन में घन के लिए जो स्वाभाविक स्नेह रहता है वह संभवतः इसलिए कि उसका स्वामी मेघ बड़ा उदार है वह चराचर का हितकारी है। बधिक ने चातक को मार डाला चातक औंधे मुंह गंगा के जल में गिरा परंतु तुरंत ही उसने अपनी चोंच लटकर ऊपर की ओर कर ली। इस प्रकार मरने के समय भी उसने अपने प्रेम पट में दाग न लगने दिया। इसी चातक की भांति तुलसी को भी अपने एक ही राम घनश्याम का भरोसा है उसी का बल है उसी से आशा और उसी का विश्वास है। मीन राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। उत्तरकांड 186 सीतापति भक्ति सुरसरी नीर मीनता विनय पत्रिका 262 और मृग आकु व्याद को रूप धरी कुहो कुरंग ही राग तुलसी ज्यो मृग मन मुरे परे प्रेम पट दाग। दोहावली 314 के उदाहरण भी तुलसी ने दिए हैं और उनके अनन्य प्रेम की भी उन्होंने प्रभु प्रशंसा की है। विनय पत्रिका में भी तुलसी चातक आस राम श्याम घन की 75 तुलसी दास कासो कहे तुम ही सब मेरो प्रभु गुरु मात पितय हो। 270 भरोसो चाहे दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम कल्प तरु कलि कल्याण करो। 226 नाही नय नाथ अवलंब मोहि आन की करम मन वचन पन सत्य करुणा निधे एक गति राम भवदीय पद त्राण की। 209 आदि पदों के अंतर्गत तुलसी ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। प्रेम का सातत्य दोहावली में प्रेम का सातत्य इस प्रकार प्रकट किया गया है। चातक तुलसी के मते स्वाति पिया न पानी प्रेम तृषा बाढ़ती फली घटय घटयगी आनी। 289 तुलसी के मत चातक ही केवल प्रेम प्यार पियत स्वाति जल जानी जग चाचत 12 मास। 308 तुलसीदास की सम्मति में चातक स्वाति नक्षत्र में भी जल नहीं पीता उसे प्रेम पिपासा का बढ़ते रहना फला प्रतीत होता है। जल पी लेने पर तो वह घट जाएगी चातक जल का नहीं प्रेम का पिपासु है। संसार समझता है कि वह स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है पर वस्तुतः वह 12 महीने उसी की याचना में लीन रहता है। चातक ऐसा प्रेमी है जो अपने प्रिय का नाम रटते रटते कृशकाय बन जाता है। प्रिय के विरह में जिसके समस्त अंग सूख जाते हैं पर उसके प्रेम का रंग नित्य नवीन और उसकी प्रेम रुचि सतत अमिनय रूप धारण करती रहती है। रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग तुलसी चातक प्रेम को नित्य नूतन रुचि रंग। दोहावली 280 प्रेम निरंतर बना रहे इसके लिए प्रेमी समक्ष प्रिय का रूप सदैव उपस्थित रहना चाहिए। इसी स्थिति में प्रेमी का उत्कर्ष होता है। यदि क्षण भर के लिए भी साधक साध्य को विस्मृत कर बैठा तो वह अधःपतित हो जाएगा। मोर के पंख जो नृत्य कला की नाना पंक्तियों का प्रदर्शन करते हुए ऊपर को उठे रहते हैं और सबको सुहावने प्रतीत होते हैं उसका कारण मयूर चक्षुओं के सामने सघन घन घटा की विद्यमानता है। जब मेघ तिरोहित हो जाता है तो मयूर के पंख भी नीचे गिर जाते हैं। पूर्वी परी कलहीन होई ऊपर कला प्रधान तुलसी देखो कलाप गति साधन घन पहचान। दोहावली 535 प्रेम के लिए यह परिस्थिति परितापमयी है अतः प्रिय प्रेमी के समक्ष दाएं बाएं आगे पीछे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान रहे उसके रोम रोम में बसा रहे ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् दक्षिणस्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसितं ब्रह्मै वेदम विश्वमिदं वरिष्ठं। मंडकोपनिषद 2:2-11 सभी प्रेम का पुष्प खिल खिल कर अपने सौरभ से समग्र संसार को सुवासित कर सकेगा और अपनी प्रतिष्ठा फैला सकेगा। प्रेम के सातत्य के साथ चिर विरह की प्रतिष्ठा भी हिंदी साहित्य में हुई है। मयूर के उदाहरण को छोड़कर ऊपर उदृत चातक के उदाहरण पर विचार करें तो वहाँ चातक का चिर अदृत बने रहना उसकी चिर विरहानुभूति का ही अभी करता है। तृप्त हो जाने में यह बात कहाँ, अतः अतृप्त बने रहना, चिरंतन विरह का अनुभव करते रहना प्रेमी के प्रेम को स्थिरता देने के लिए अति आवश्यक है। चिर विरह की यह भावना हिंदी साहित्य के भक्त कवियों की अनुपम देन है। नवधा भक्ति। अरण्य कांड में राम शबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, भगति हीन नर तो है कैसा, बिन जलवारित देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तिन को ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृथा पसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति कमान, चौथी भगति मम गुण गण, कर कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जसा लाभ संतोषा, सपने को नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सपसन छन हीला, छल हीना मम भरोस ही हर्ष नदीना, नवमह एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 64 भगवान एक भक्ति का नाता मानने वाले हैं। तुलसी ने स्वयं भी दोहावली में किसी से अपना नाता राम के नाते तथा किसी से प्रेम राम के प्रेम के कारण ही स्वीकार किया है। नातो नाते राम के, राम स्नेह स्नेह, दोहावली 89। भक्ति विहीन नर बिना जल वाले बादल के समान है। नवधा भक्ति में एक संतों का संसर्ग, दो हरि कथा में अनुराग, तीन गुरु सेवा, चार हरि गुणगान, पाँच दृढ़ विश्वास पूर्वक राम नाम का जाप, छह सज्जनों के धर्म में निरंतर निरत रहना अर्थात दम शील और विविध प्रकार के कर्मों से वैराग्य, सात संसार को राममय देखना और संतों को राम से भी अधिक समझना, आठ जो कुछ मिले उसी में संतोष करना और पर दोष दर्शन से पृथक रहना, नौ निष्कपट होकर सबसे सरल व्यवहार करना और राम के भरोसे रहकर हृदय में हर्ष तथा धैर्य का अनुभव न करना वर्णित हुए हैं। इन नौ में से यदि एक भी किसी के पास है तो वह भगवान का अतिशय प्रेम पात्र है। भगवान के दर्शनों का फल परम अनुपम है। जीव इससे अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड दशम सर्ग श्लोक 22 से 27 तक इसी प्रकार की और लगभग इन्हीं शब्दों में थोड़े से क्रमांतर के साथ नव विधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है। श्लोक 27 में इसे नव विधा भक्ति कहा गया है, परंतु श्लोक 22 में इन नौ प्रकारों को भक्ति का साधन दिखा गया है। शबरी के लिए भामिनी संबोधन दोनों ही ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। क्रम का अंतर इस प्रकार है, प्रथम सत्संगति जो की त्यो है, दूसरा स्थान अध्यात्म रामायण में कथा लाभ का है जिसे तुलसी ने कथा प्रसंगों में अनुराग कर दिया है, तीसरा स्थान गुणे रणम का है जिसे तुलसी ने चौथे स्थान पर गुण गण गान लिखा है, चतुर्थ साधन भगवान के वचनों की व्याख्या है जिसे तुलसी ने अपनी सूची में स्थान नहीं दिया परंतु इसके अपर अंग आचार्य उपासन को गुरु सेवा के रूप में तृतीय स्थान पर रखा है, पंचम साधन पवित्र शील यम तथा नियमादि का है जो तुलसी की नवधा भक्ति में छठे स्थान पर है, पूर्णशील होना सज्जनों का धर्म है तथा यम नियमादि में दम और विरति की गणना कर ली गई है, छठा साधन प्रभु पूजा में नैतिक निष्ठा रखना है जिसे तुलसी के पंचम भेद के अर्थात दृढ़ विश्वास द्वारा प्रकट किया जा सकता है, सप्तम साधन राम मंत्र की सांगोपासना है जिसे तुलसी ने पंचम भेद के पूर्वार्ध मंत्र जाप में सन्निहित कर दिया है, अष्टम साधन में अध्यात्म रामायण कार ने सर्व भूतों में राम बुद्धि भक्तों की पूजा बाह्यार्थों में विराग तथा समाधि का समावेश किया है, तुलसी ने इसके केवल प्रथम दो अंशों को भक्ति के सप्तम प्रकार में स्थान दिया है, आठवें स्थान पर उन्होंने यथा लाभ संतोष और पर दोष और दर्शन को रखा है जो अध्यात्म रामायण में नहीं है, नवम साधन तत्व विचार है जिसका एक परिणाम हर्ष तथा शोक से पृथक हो जाना है, तुलसी के नवम भेद में इस परिणाम का समावेश है परंतु उन्होंने इसमें सबसे छल रहित व्यवहार को भी सम्मिलित कर दिया है, यद्यपि इसे भी तत्व विचार का परिणाम कहा जा सकता है फिर भी परिणाम और कारण एक ही नहीं है, तुलसी ने इसे नवधा भक्ति कहा है और अध्यात्म रामायणकार ने नव विधा भक्ति तथा भक्ति के साधन दोनों नाम दिए हैं, वस्तुतः इसमें दोनों सम्मिलित हैं। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का उल्लेख है उसके श्रवण कीर्तन और अर्चन अध्यात्म रामायण के द्वितीय तृतीय तथा षष्ठ प्रकारों में अंतर्गुप्त हैं। पाद सेवन को आचार्योपासन क्योंकि आचार्य और प्रभु समान ही समझे गए हैं। तथा हर स्मरण को प्रभु वचन व्याख्या एवं मंत्रोपासना माना जा सकता है। भागवतोक्त नवधा भक्ति के अन्य भेद अध्यात्म रामायण तथा रामचरितमानस में वर्णित नौ विधा भक्ति की तालिका में नहीं आते। इस तालिका के अवशिष्ट अंश साधन मात्र हैं। भागवतोक्त नवधा भक्ति के कतिपय उदाहरण तुलसी की रचनाओं से नीचे दिए जाते हैं। श्रवण सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, जाई ही सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई ही अति नेहा। उत्तरकांड 85। रामचरित जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महा मुनि जेउ, हरि गुण सुनही निरंतर देउ, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। उत्तरकांड 76। कीर्तन कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना, एक अधार राम गुण गाना, सब भरोस तजिजो भजी राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। उत्तरकांड 164। सजल नयन गदगद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के ही की ना मिटी भव भीर। विनय पत्रिका 193। जप राम राम रमु राम राम रतु, राम राम जपु जीहा। विनय पत्रिका 65। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निजु नावरे। विनय पत्रिका 66। जास नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। सुंदरकांड 21। निम्नांकित अर्धाली में जप का पूर्ण रूप प्रकट हुआ है। पुलक गात ही असिय रघुबीरु, नाम जीह जपु लोचन नीरु, जाप के समय शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में सीताराम का ध्यान है, जेवा से नाम का जाप चल रहा है और नेत्र प्रेमाश्रुओं से ओतप्रोत हैं। अर्धाली के प्रथम चरण में संयोग और द्वितीय चरण में वियोग की अभिव्यक्ति भी हो रही है। स्मरण सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही, देवसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अध दहही। बालकांड 143। पापी हु जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। किष्किंधा कांड 32। श्रवण कीर्तन और स्मरण राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। 222। पाद सेवन विचरही अवनी अवनीत चरण, सरोज मन मधुकर किए। विनय पत्रिका 135। प्रणत पाल प्रणतोर मोर प्रण जियहु, कमल पद देखे। विनय पत्रिका 113। साधन सिद्ध राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मत येहु। अयोध्या कांड 290। अर्चन तुमही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, मंत्र राज नित जपही तुम्हारा, पूजही तुमही सहित परिवारा, तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जिमाय देही बहुदाना। अयोध्या कांड 130। वंदन शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। अयोध्या कांड 130। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। बालकांड 137। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। बालकांड 136। जपि नाम करहि प्रणाम कही, गुण ग्राम राम ही धरि किए। विनय पत्रिका 135। दास्य अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अरण्यकांड 22। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। उत्तरकांड 204। दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान है। शिव पार्वती से उनके संबंध में कहते हैं, हनुमान समान बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उत्तरकांड 73। सख्य भक्तों की ओर से तो नहीं, पर प्रभु की ओर से यह भाव मानस में अवश्य प्रकट हुआ है, यथा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोही अधिक पियारे। उत्तरकांड 18। आत्मनिवेदन विनय पत्रिका के पद भक्त तुलसीदास के आत्मनिवेदन से भरे पड़े हैं। उनमें तुलसी ने अपना हृदय खोलकर प्रभु के आगे रख दिया है। आत्मनिवेदन में अपने दोषों का उद्घाटन और उन्हें हटाने के लिए प्रभु से विनय की जाती है, यथा दोषोद्घाटन कैसे देहु नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि भर, भगति परिहरि तोरी, बहुत प्रीति पुजाई वे पर पूजी वे पर थोरी, देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ता असमोरी। विनय पत्र का 158 विनय रामचंद्र रघुनायक तुमसो हाँ विनती के ही भांति करो अघ अनेक अवलोक की आपने अनघ नाम अनुमान ही डरा विनय पत्र का 141 एकादश आसक्तियाँ नारद भक्ति सूत्रों में जिन एकादश आसक्तियों का उल्लेख है उनमें से गुण महात्मा शक्ति ऊपर वर्णित श्रवण और कीर्तन में पूजा शक्ति अर्चन पाद सेवन और वंदन में स्मरणा शक्ति स्मरण में दास्या शक्ति दास्य में सख्या शक्ति सख्य में और आत्मनिवेदना शक्ति आत्मनिवेदन में आ गई है। अन्य आसक्तियों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। रूपाशक्ति देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वंग अरण्य कांड 16 छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एकटक रहे नयन पट रोकी चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा बालकांड 176 वात्सल्या शक्ति कबहु उछंग कबहु बर पलना मात दुला रही कही प्रिय ललना बालकांड 230 सुत विषयक तव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को बालकांड 179 कांता शक्ति देखन मिस मृग विहंग तरु फिरही बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी बालकांड 267 प्रभु ही चितय पुनि चितय मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल बालकांड 291 तन्मयता शक्ति देखी मन ही मन कीन प्रणामा बैठे ही बीत जात निशिजामा कृष्ण अनुशीष जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम चरण महलीन सुंदर कांड 9 राम ही देखे एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उर आनी हो ही शिथिल तन मन बर बानी अयोध्या कांड 115 परम विरहा शक्ति कबहु कृपा करी रघुवीर मोहु चितय हो भलो गुरु जन आपनो जिय जानी दया निधि अवगुण अमित पितय हो विनय पत्रिका 270 मन क्रम वचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी सुंदर कांड 32 मोर अभाग जियावत मोही जेही हो हरि पद कमल बिछोही लंका कांड 123 शरणागत वत्सलता प्रभु के दिव्य महनीय गुणों में भक्त की दृष्टि से शरणागत वत्सलता का विशेष महत्व है। सभी संतों की भांति तुलसी ने भी इसका मुक्त कंठ से वर्णन किया है। राम सुग्रीव से विभीषण के आगमन पर कहते हैं सखा नीति तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भयहारी सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना शरणागत कह जो तजही निज अनहित अनुमानी तेनर पामर पाप में तिनही विलोकत हानि सुंदर कांड 45 कोटि विप्रबद लागही जाहू आये शरण तजहु नहीं ताहू सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघनाथ ही तब ही पापवंत कर सहज सुभाव भजन मोर तेही भाव नकाऊ जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई सुंदर कांड 46 तुलसी ने उपर्युक्त पंक्तियों में लौकिक शरणागति तथा भक्त की शरणागति में अंतर उपस्थित किया है। भय एवं क्लेश की अवस्था तो दोनों स्थानों पर कारण बनती है पर लोक में पापवंत एवं दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति किसी बलशाली की शरण में जाकर अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं कर देता। यही क्यों बल की शरण पाकर उसे अपनी दुष्टता के प्रदर्शन का और भी अधिक अच्छा अवसर मिल जाता है। भक्त की शरणागति इससे विपरीत है। वह पापी बनकर अथवा दुष्ट हृदय लेकर भगवान के सम्मुख जा ही नहीं सकता। पापियों का हृदय सहज स्वभाव से ही भक्ति के प्रतीक चलता है। अतः घोर से घोर विप्रवत जैसे महान पातक का भागी बनकर भी जीव जब प्रभु चरणों में प्रणत होता है तो उसके पूर्व ही पश्चाताप के प्रबल पावक में पड़कर उसके पाप प्रक्षीण हो जाते हैं। विगरत जन्म अनेक की सुधरत फल लगे न आधु पाही कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु विनय पत्रिका 193 और जब लोक से भी शरणागत का परित्याग पापमय पामरता तथा ग्रहण धर्म पूर्ण कार्य समझा जाता है तो भक्ति के क्षेत्र में तो उसका अपनाया जाना और भी अधिक समीचीन है। भगवान की शरण में पहुँचते ही भक्त जब आर्त वाणी में प्रेम सहित कृपा निधि रक्षा करो ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है तो राम उसे अपना कर साधु बना देते हैं और शीघ्र ही उसके अनेक जन्मों की बिगड़ी बात को सुधार देते हैं। शरणागति के 6 प्रकार प्रपत्ति मार्ग प्रभु की शरण जाने पर भक्त आत्महित के अनुकूल सत्कार्यों के करने का संकल्प करता है, उसके प्रतिकूल पथ के परित्याग में लीन होता है, प्रभु के गोतृप्त स्वरूप का वर्ण और उसकी रक्षा शक्ति में विश्वास करता है। इसके साथ ही अपने दैन्य का निवेदन करता हुआ सर्वात्मना अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से शरणागति के ये 6 प्रकार अति मूल्यवान हैं। यहाँ इन 6 प्रकारों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुकूल का संकल्प, अब लो नसानी अपना नसे हों, श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हों। विनय पत्रिका 105। प्रतिकूल का त्याग, जानकी जीवन की बलि जय हो, श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गय हो। विनय पत्रिका 104। गोपतृप्त वरण, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप कुंजहारी, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात सखा गुरु तू सब विधि हेतु मेरो। विनय पत्रिका 79। रक्षा का विश्वास, सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक, गुण ग्राम को बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। विनय पत्रिका 155। कौन की आस करे तुलसी जो पै राखी है, राम तो मारी है कोरे। कवितावली उत्तरकांड 48। कार्पण्य, तुम तजी हो कासो कहो और को हितु मेरे, दीन बंधु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोहू के ही केरे। विनय पत्रिका 273। जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। विनय पत्रिका 101। आत्म निक्षेप, सीतर सुखद छाह जेहि करकी, मेटति पाप ताप माया, निसिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसी दास छाया। विनय पत्रिका 138। मेरे राय रिय मेरे राव रिय, गति रघुपति बलि जाऊं, नीलज नीच निर्गुण निर्धन कह जग दूसरो न ठाकुर ठाऊं, कीजे दास दास तुलसी अब कृपा सिंधु बिन मोल बिकाऊं। विनय पत्रिका 153। प्रण करी हो हठी आज तय, राम द्वार पन्यो हो, तू मेरो यह बिन कहे उठी हो न, जन्म भरी प्रभु की सौ करी निपर्यो हो। विनय पत्रिका 267। तुलसी भक्त हैं और भक्ति के विकास में वे राम नाम के जाप तथा राम कृपा को ही सर्वाधिक श्रेय देते हैं। विधि विधानों में उनकी आस्था नहीं, योग यज्ञ आदि को वे कलयुग के लिए उपयोगी नहीं मानते, यद्यपि यज्ञ पद्धति को वे राक्षसों के लिए भी अमृत प्रदायिनी मानते हैं। लंका कांड 109। भक्ति के बाधकों के विध्वंस और साधकों अथवा सहायकों के संपादन में एकमात्र राम कृपा ही समर्थ है। इसके लिए निरंतर राम नाम का जाप चलना चाहिए, उठते बैठते जहाँ और जैसे बने भगवान राम का स्मरण करते रहना चाहिए। ये 2 तत्व राम स्मरण और भगवत कृपा उनके समस्त साहित्य के सार हैं। राम नाम की रट, राम नाम का कीर्तन और राम नाम का स्मरण तथा चिंतन उनके मानस का केंद्र बिंदु है, जिस पर वे अपने मन की समस्त वृत्तियों को आश्रित कर देना चाहते हैं। मन यदि अपनी हीनता एवं दीनता के कारण इधर उधर याचक बना हुआ घूमने लगता है, तो वे तुरंत उसके समक्ष प्रभु की महत्ता, दयालुता और सहनशीलता को उपस्थित कर देते हैं। सुंदरकांड 240 में विभीषण राम की महत्ता इस प्रकार व्यक्त करते हैं। राम बिना किसी कारण के स्नेह करने वाले हैं, वे गो द्विज तथा देवों के हितकारी हैं, जन रंजन खल भंजन भक्त व्यथा पनोदन और वेद धर्म रक्षण उनके स्वाभाविक कार्य हैं। अहम भाव के जागृत होने पर यदि दैन्य और अनुहार से काम नहीं चलता, तो वे मन को भर्त्सना और त्रास देकर उसे भक्ति की ओर उन्मुख करने की चेष्टा करते हैं। कभी वे प्रभु की शरणागत वत्सलता का और आर्त रक्षणीयता का, बड़े से बड़ा पापी भी उनकी शरण जाने पर त्राण पा जाता है और उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुंदरकांड 246 में भी तुलसी ने राम की शरणागत वत्सलता का वर्णन किया है, विश्वास दिलाकर उसे आश्वस्त भी करते हैं। मन के न मानने पर वे प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं और प्रार्थना में निरत होते हैं। इन प्रार्थनाओं में उनका समग्र अंतः बाह्य अभिव्यक्त होता है। विगत पापों की स्मृति से परितप्त वर्तमान असहायावस्था से आहत उनका मन अंदर ही अंदर ग्लानी से गल उठता है। यह विगलन मन के कालुष्य को धोने की अपूर्व शक्ति रखता है। भक्त का यह प्रबल एवं परम पावन संबल है। इस विगलन में आवेग, शोक, व्याकुलता, विचारणा, पश्चाताप आदि कई प्रवाह सम्मिलित रहते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें विनय भक्ति की आधारशिला माना है। राम कृपा का उल्लेख साधन परिचय के अंतर्गत हो चुका है। यहाँ नाम स्मरण तथा भक्ति की भूमिकाओं पर संक्षेपता तुलसी के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। नाम स्मरण, कुछ विद्वान गोस्वामी तुलसीदास को महात्मा रामानंद के शिष्य परंपरा में परिगणित नहीं करते, पर पूजा के आडंबर को छोड़कर राम नाम का जाप और स्मरण जिस पर तुलसी इतना बल देते हैं, उन्हीं की भक्ति पद्धति के अनुसार है। मानस के बालकांड के प्रारंभिक अंश राम नाम की महत्ता से भरे पड़े हैं। अन्यत्र भी जहाँ कहीं तुलसी का अवसर मिलता है, वे इसके महत्व का प्रतिपादन बलवती वाणी में करते हैं। राम का नाम तुलसी के लिए कल्प वृक्ष है, कलयुग में कल्याण का वही एकमात्र निकेतन है। इसी के स्मरण से तुलसीदास मादक भांग से विषम जर नाशक तुलसी बन गए। बालकांड 52 तथा उत्तरकांड 163। कलयुग में न कर्म कांड चल पाता है, न उपासना कांड और न ज्ञान कांड। इस युग में तो केवल राम नाम का ही आधार है। बालकांड 43 तथा विनय पत्रिका 67। भाव कुभाव अरुचि और आलस्य से भी यदि राम का नाम जप लिया तो उसे दशो दिशाओं में मंगल होगा। बालकांड 44। राम नाम के प्रसाद से ही शिव की अविनश्वरता है। अमंगल वेश होने पर भी वे मंगल की राशि है। शुक्र सनक आदि सिद्ध मुनि और योगेश्वर नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का उपभोग करते हैं। नारद प्रहलाद और ध्रुव राम नाम के जाप से ही भक्त शिरोमणि और अविचल स्थिति वाले बन गए। हनुमान ने इसी पवित्र नाम के सहारे भगवान को अपने वश में कर लिया। बालकांड 42। तुलसी की सम्मति में यदि हम अपने अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हैं तो हमें अपने जीवा रूपी द्वार दहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख लेना चाहिए। बालकांड 37। प्रभु के निर्गुण और सगुण दो रूप है, पर नाम इन दोनों से बढ़कर है, क्योंकि वह इन दोनों को भक्त के लिए सुगम कर देता है। इसी से दोनों का निरूपण भी किया जाता है। बालकांड 39। अतः नाम ब्रह्म और राम दोनों को अपने वश में रखता है। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान और नेत्रों के सामने सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी हो, इन दोनों के बीच में रचना पर सुंदर राम नाम हो, यह दृश्य वैसा ही होगा जैसे स्वर्ण के संपुट में ललित रत्न सुशोभित हो। दुहावली 7। राम नाम लेने से ही वाणी की शोभा है, इस बात को मद मोह छोड़ कर विचार लेना चाहिए। सुंदरकांड 24। राम का नाम अंक है और समस्त साधन शून्य रूप है। यदि अंक नहीं रहा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और यदि वह बना रहा तो शून्य शून्य न रहकर दश की संख्या में परिणत हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि राम नाम से विहीन साधन कुछ भी फल नहीं देते, पर उसके जाप के साथ 10 गुने लाभदायक होते हैं। दोहावली 10। भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम का नाम चंद्रमा के समान है। भगवान के अन्य नाम निर्मल तारागण है, ये सब भक्त के हृदय रूपी व्योम में निवास करें। अरण्यकांड 74। जीवा से राम नाम जपना चाहिए, प्राणों द्वारा राम नाम रटना चाहिए और मन को राम नाम में रमा देना चाहिए। इस प्रकार राम नाम रूपी अनुभव अभिनव मेघ के लिए मन को हठ पूर्वक चातक बनना है। राम नाम में हमारी बुद्धि लगी हो, राम नाम से ही अनुराग हो और राम नाम ही हमारा शरण स्थल हो। विनय पत्रिका 65। राम नाम का स्नेह से स्मरण करना चाहिए, वही निस्संबल का संबल, असहाय का सहायक, अभागे का भाग्य, गुणहीन के लिए गुण, निराधार का आधार और बुभुक्षित के लिए माता पिता है। राम नाम से बढ़कर पतित पावन और कोई नहीं है। तुलसी के समान ऊसर स्थल राम नाम का स्मरण करके सुंदर उपजाऊ भूमि बन गया। विनय पत्रिका 69। तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, मैं अपने को भलीभांति जानता हूँ, मुझे आप ही ने रचा और बढ़ाया है। मैं सुआ की भांति आपका नाम रटता रहता हूँ। मेरे जैसे गधे पर चढ़ने वाले, गर्हित आचरण करने वाले व्यक्ति को आपके नाम ने ही हाथी पर चढ़ा दिया है, यशस्वी और गौरवशाली बना दिया है। कवितावली उत्तरकांड 60। अध्यात्म रामायण काल के मत में भी राम नाम के जाप से ही कलयुग में मुक्ति प्राप्त होती है। राम नाम नहीं वो मुक्ति ही स्यात् कलौ नान्ये न केनचित्। अयोध्या कांड 5-27। विनय भक्ति की भूमिकाएं। दीनता। तुम जनि मन मैलो करो, लोचन जनि फेरो, सुनहु राम बिनु रावरे, लोकहु पर लोकहु को न कहु हित मेरो। विनय पत्रिका 272। भत्ना। सुनी मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयो न काहु सुख, सठ यह समझी सबेरो। विनय पत्रिका 87। भय दर्शन। राम 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 जीह, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहू ही जाए, तिहु ताप तपी है। विनय पत्रिका 68। आश्वासन। कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को। विनय पत्रिका 156। विचारणा। राम स्नेही सो तै न स्नेह कियो, अगम जो अमरनी हूँ सो तनु तो ही दियो। विनय पत्रिका 135। मनोराज्य। जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, पैर और के कहा सरह, कोई न बाको वार भक्त को, जो को कोटि उपाय करे। विनय पत्रिका 137। मान मर्षण। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राख ही काऊ, संसृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, जिमि शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसी दास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उत्तरकांड 108-109। भक्ति पथ के बाधक। गीता के षोडश अध्याय में जिस दैवी तथा असुरी संपदा का वर्णन है, वही मानस के अरण्य कांड में वर्णित माया का विविध रूप है। दैवी संपदा विद्या है तथा असुरी संपदा अविद्या। एक जीव को भव सागर से पार करने वाली है तो दूसरी भव पाशों में आबद्ध करने वाली। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। अरण्यकांड 27। संत महात्मा दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके भगवान के अनन्य भाव से आराधना करते हैं, परंतु विक्षिप्त बुद्धि वाले व्यर्थ कर्मा पुरुष आसुरी प्रकृति का अवलंबन लेकर स्वयं भ्रांत बनते हैं तथा विश्व की अशांति का भी कारण बनते हैं। गीता 9:12-13। देवासुर संग्राम भारतीय ही नहीं विश्व के साहित्य का अति परिचित विषय है। ब्रह्मा के बनाए हुए संसार रूपी सागर से ही सुधा, शशि और धेनु रूपी संत तथा विष और वारुणी रूपी खल प्रकट हुए हैं। मानव मन में इन दोनों के रूप विद्यमान है, जिन्हें दैवी आसुरी तथा सत असत प्रवृत्तियाँ कहते हैं। तुलसी ने राम के अतिरिक्त जिन देवों की स्तुतियाँ विनय पत्रिका के प्रारंभिक 61 पदों में लिखी हैं, वे मानव के आंतरिक दिव्य शक्तियों के ही प्रतीक हैं। उनकी कृपा का आह्वान मानो अपने ही सत प्रवृत्तियों का आह्वान है, जिससे साधक अपनी साधना में सहायता लेता है। यही दिव्य शक्तियाँ उसे इन शक्तियों के केंद्र आत्म तत्व तक पहुँचाती हैं। तुलसी भी इन देवों से एक ही प्रार्थना करते हैं, देहु रघुवीर पद प्रीति। इन शक्तियों में गंगा, यमुना, सरस्वती आंतरिक प्राण धारा के प्रवाह हैं, हनुमान साक्षात प्राण तत्व हैं, काशी चित्रकूट आदि प्राण चक्र के केंद्र स्थान हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बंधु चतुर्व्यूह के अंदर आते हैं और सृष्टि विकास तथा शरीर विकास के क्रम में मूल तत्वों के स्थानीय हैं, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। शिव ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। सीता माता स्वयं भगवान की ही शक्ति स्वरूपा है, जो उपयुक्त तत्वों द्वारा सृष्टि रचना करती है तथा भक्ति के रूप में जीवों की क्लेश हारनी भी है। इन सब के प्रेरक स्वयं भगवान राम हैं। दिव्य शक्तियों से सहाय की याचना एक ओर भक्ति भूमिका को दृढ़ करने के लिए है तो दूसरी ओर असत प्रवृत्तियों की प्रबलता को क्षीण करने के लिए भी। असत प्रवृत्तियों में तीन प्रमुख हैं, काम, क्रोध और लोभ। गीता 16:21 में इन्हें आत्मनाशक नरक द्वार कहा गया है। तुलसी ने गीता के इस स्थान का अनुवाद करते हुए लिखा है, सात तीन ही अति प्रबल फल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिष मह क्षोभ। मानस अरण्यकांड 68। ये तीनों प्रबल खल विज्ञान धाम मुनियों के मन में भी शोभ उत्पन्न करने वाले हैं। तुलसी ने आगे 269 में लिखा है कि लोभ का बल इच्छा और दम्भ है, काम का बल नारी है और क्रोध का बल कठोर वचन बोलना है। दांते ने स्वरचित डिवाइन कॉमेडी में आनंद गिरी पर आरोहण करने से पहले जिन तीन श्वापदों चीता, लियोपार्ड, सिंह लॉयन और मादा भेड़िया शी वोल्फ का वर्णन किया है और जो उसे आनंद गिरी पर चढ़ने नहीं देते, वे क्रमशः काम, क्रोध और लोभ के ही प्रतीक हैं। एल दीवान चंद शॉर्ट स्टडी इंद्र भगवत गीता पेज 40। अविद्या माया के इन तीन खलों का परिवार बहुत विस्तृत है। मद, अहंकार, मात्सर्य और मोह क्रमशः इन्हीं के सहोदर भ्राता हैं। मद की जननी प्रभुता है। प्रभुता पाई काहि मद नाही। बालकांड 84। लंकाकांड 46 में शव सदृश जिन कौल मद्यपी कामी कृपण मूढ़ दरिद्र अयशी अत्यंत वृद्ध रोगी क्रोधी विष्णु विमुखी श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक और अघ के आकार 14 प्राणियों का वर्णन है, वे इन्हीं फलों की संतति हैं। उत्तरेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा में यही फैले दिखाई देते हैं। विनय पत्रिका पद संख्या 82 में इन्हीं को मल, पद संख्या 124 में मनोविकार तथा पद संख्या 188 में संसार कहा गया है। उत्तरकांड 100, 101 और 102 में जिन तृष्णा मोह मद यौवन ज्वर शोक चिंता आदि को माया का परिवार कहा गया है, वे वस्तुतः इन्हीं के अपर रूप हैं। उत्तरकांड 208 में रूपक अलंकार द्वारा इन्हीं को विविध प्रकार की मानसिक व्याधियां कहा गया है। मोह जो लोभ का प्रारंभिक रूप है, समस्त व्याधियों का मूल है, इसी से अनेक क्लेश उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ कफ है, क्रोध पित्त है। यदि ये तीनों किसी व्यक्ति के मन में एकत्र हो गए तो दुखदायी सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। ममता, दाद, ईर्ष्या, खुजली, हर्ष, विषाद, गले की वृद्धि पर सुख से उत्पन्न जलन, राज्य क्षमा, दुष्टता एवं कुटिलता, कोढ़, अहंकार, डमरुआ या गठिया, दम्भ, कपट, मदमान, नहरुआ, तृष्णा, जलंधर, त्रिविध एषणाएं, तिजारी और मत्सर तथा अविवेक द्विविध सात एवं असाध्य ज्वर का रूप है। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाता है, ये तो अनेक असाध्य व्याधियां हैं जो जीव को असह्य पीड़ा पहुंचाती हैं। इन व्याधियों के रहते हुए मनुष्य शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? आगे दोहा संख्या 209 में इन व्याधियों के शमन के लिए नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप और दान जैसी करोड़ों औषधियों की ओर संकेत किया गया है, पर मानसिक रोगों के निवारण करने में ये औषधियाँ भी असमर्थ हैं। आश्चर्य तो यह है कि ये रोग सभी को व्याप्त कर रहे हैं, पर कोई बिरला व्यक्ति ही इन्हें देख पाता है। रोग ज्ञान हो जाने पर रोग कम तो हो जाते हैं, परंतु उनका आत्यंतिक विनाश नहीं हो पाता। विषय का कुपथ्य इन्हें पुनः हरा भरा कर देता है। भक्ति पथ के यही बाधक हैं। जब तक मन में विषय आकांक्षाएं विद्यमान है और हृदय में अंधकार के स्थान पर प्रकाश नहीं आता, तब तक सुख कहाँ। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरो विषय आस मन माही। विनय पत्रिका 123। जब तक शोक धाम काम को छोड़कर मानव राम का भजन नहीं करता, तब तक कुशल कहाँ, मानव मन को विश्राम कहाँ। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम सजी काम। सुंदरकांड 48। जब तक राम की कृपा नहीं होती, तब तक ये खल लोभ मोहादि मानव मन को संतप्त करते ही रहते हैं, पर जब भगवत कृपा से उनकी अनपायनी भक्ति प्राप्त हो जाती है, तब ये समूल नष्ट हो जाते हैं। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तो जतन कोटि नहीं चाहे। उत्तरकांड 210। भगवत भक्ति ही इन रोगों की एकमात्र औषधि है, और वही आध्यात्मिक आदिदैविक तथा आदिभौतिक त्रितापों को नष्ट करने वाली है। जास नाम भव भेषज हरण प्राप त्रयसूल। उत्तरकांड 214। जब राम अपना लेते हैं, तो फिर अविद्या माया का यह खल परिवार ठहर ही कैसे सकता है। तब से मोहिन व्यापी माया, जब से रघुनायक अपनाया। उत्तरकांड 136। सिद्धि। ऊपर भक्ति के जिन बाधकों का वर्णन किया गया है, वे समस्त अंतर्बाह्य कारणों के विषय हैं। तुलसी विषय अनुरागी व्यक्तियों को अभागा कहते हैं, क्योंकि ये विषय उन्हें भगवान की ओर उन्मुख नहीं होने देते। सुना हो उमा से लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। उत्तरकांड अरण्यकांड 61। अतः मानव के प्रयत्न की सर्वप्रथम सिद्धि, उसके साधनों का प्रथम फल विषय विलास से विराग का होना है। इस विराग से ही जीव का जागरण होता है। जब तक मोहादि विषयों की रात्रि में मानव सो रहा है, तब तक उसे सपना आते रहेंगे और वह उनसे दुखी होता रहेगा। परमार्थी और योगी इसी हेतु प्रपंच से पृथक रहकर विषय विलास से विरक्त होकर विवेक के प्रकाश की ओर चलते हैं। विषय वासना कम है तो ज्ञान ज्योति है। जब साधक मोह भ्रम से हटकर प्रबोध का अनुभव करने लगे, तभी उसे जागृत समझना चाहिए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अयोध्याकांड 94। सत्य ज्योति ही आत्मज्ञान कराती और उसे भगवान के चरणों में अनुरक्त करती है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अयोध्याकांड 94। भगवान के दर्शन का फल भी जीव को अपने स्वाभाविक स्वरूप की प्राप्ति है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अरण्यकांड 64। आत्मज्ञान भगवत भक्ति और भगवत कृपा द्वारा साध्य होता है। आत्मज्ञान से ही परमात्म ज्ञान होता है। मुंडक उपनिषद 2:2-9। सत्य आत्मविदो विदुः। और इस ज्ञान के होते ही संसार स्वप्न के समान नष्ट हो जाता है। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति के साथ एक और अचल हो जाती है। सोई जानई जही देह जनाई, जाना तो तुम ही हो जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानही भगत भगत गुरुचंदन। अयोध्याकांड 128। भगवान की कृपा ही इस मिलन के मूल में कार्य करती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो ज्ञान दीप का रूपक बांधा गया है, उसमें भी सिद्धियों के इसी क्रम का उल्लेख है। ज्ञान द्वारा सोहम अस्मि की अखंड वृत्ति ही सत प्रकाश की दीपशिखा है। इसी से आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश होता है, जो सांसारिकता के मूल में निहित भेद और भ्रम का विनाश करता है। होई अचल जिमि जीव हरिपाई। किष्किंधाकांड 16। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बालकांड 136। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म सुख अनुभव सुख सुप्रकाशा, सब भव मूल भेद भ्रमनाशा। उत्तरकांड 202। मंडक उपनिषद 2:2-8 तथा कठ 2:3-14-15 में भी यही बात कही गई है। सत्य के प्रकाश में ही बुद्धि हृदय रूपी घर में बैठकर अहम भाव की ग्रंथि को खोलने का प्रयत्न करती है। इसी बीच में माया आकर अनेक प्रकार के विघ्न खड़े कर देती है। वह रिद्धियों और सिद्धियों को प्रेरित करके बुद्धि को लोभ में डालती है, और वे सिद्धियां विविध प्रकार के छल छद्मों द्वारा समीप पहुंचकर अपने अंचल से सद्गुण रूपी दीपक की ज्योति को बुझा देती है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करय तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु खाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। कल बल छल कर जाय समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। उत्तरकांड 202। यह बुद्धि यदि बुद्धि इन सिद्धियों के चक्र में न पड़ती तो इंद्रियों के झरोखों में बैठे हुए देवता उपद्रव प्रारंभ कर देते हैं। वे विषय वायु के झोंकों को आते देखकर वातायन को खोल देते हैं, जिससे विज्ञान का दीपक बुझ जाता है। इसके बुझते ही जीव पुनः सांसारिक क्लेशों का आखेट बनता है। कबीर ने इसी अवस्था को हद का नाम दिया है। सत की भी एक सीमा है, यदि प्रभु कृपा न हुई तो सत की ज्योति स्थिर नहीं रह सकती। मानव साधनों द्वारा इतना ऊंचे चढ़कर पुनः पतित हो सकता है। जब तक ग्रंथि विद्यमान है और वह अंतिम सत की ही ग्रंथि है, तब तक मुक्ति कहाँ, परमानंद कहाँ। इस हद से बेहद में पहुंचने के लिए सत की ग्रंथि को काटकर निर्ग्रंथि बनने के लिए भगवत भक्ति अर्थात सर्वात्मना समर्पण और भगवत कृपा की आवश्यकता है। यह समर्पण ही शरणागति है, इसके बिना ग्रंथि छूट ही नहीं सकती। भगवत कृपा अंतिम साधन है, जो जीव के पास नहीं है इसे वह प्राप्त करता है। यह प्राप्ति ही वस्तुतः प्रभु का वरण है। उपनिषद जब कहती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेना, कठोपनिषद 1:2-3, तब उसका यही अर्थ है। मेधा या बुद्धि जीव को इस ग्रंथि से नहीं छुड़ा सकती, इसे तो प्रभु का प्रसाद ही छुड़ाता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य अथवा समक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात्म महिमानमात्मन, कठोपनिषद 1:20। अथवा तुलसी के शब्दों में तुलसीदास यह जीव मोह रजु जोई बांधो सोई छोर है, विनय पत्रिका 102। तुलसी राम भक्ति को चिंतामणि कहते हैं, जिसका परम प्रकाश दिन रात बना रहता है तथा जो दीपक भाजन घी स्नेह और बत्ती किसी की अपेक्षा नहीं रखती, जिसके प्रकाश को लोभ रूपी पवन बुझा नहीं सकता। यह वह प्रकाश है जिससे अविद्या का अंधकार नष्ट होता है और कामादि फल निकट नहीं आ पाते। वेद के शब्दों में इस प्रकाश के द्वारा शरीर प्राण मन और बुद्धि की गुहाओं में भरा हुआ तम तोम विध्वंस हो जाता है। तम में विचरण करने वाले निशाचर जिनकी संज्ञा वेद में अंतरी कही गई है, अभी तक चोरी और डकैती कर सकते हैं अथवा आक्रांत बनकर आत्मधन को लूट सकते हैं, जब तक यह प्रकाश उदित नहीं हो जाता। भक्ति रूपी और परम प्रकाश सबके भाग्य की वस्तु नहीं है, प्रभु की कृपा से किसी किसी साधक को ही यह सिद्ध हो पाता है। वेद जैसा पीछे लिखा जा चुका है, उत्त उत्तर और उत्तम तीन ज्योतियों का नाम लेता है। उत्त सत की ज्योति है, उत्तर आत्म ज्योति है और उत्तम प्रभु की ज्योति है। साधक का आदर्श अंतिम उत्तम ज्योति को प्राप्त करना है। उद्वयम तमसस परिष्ठ पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तमम, यजुर्वेद 35:14। तुलसी ने भगवत भक्ति को ही परम प्रकाश कहकर उसी की प्राप्ति को अपना चरम उद्देश्य समझा है। विनय पत्रिका पद संख्या 60 में नारायण भगवान की दीप्ति को भी तुलसी अगणित सूर्यों के समान लिखते हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, रामचरितमानस उत्तरकांड 1103। परम भागवत तुलसी के लिए भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वे केवल हरि भजन को सत्य और अन्य सबको स्वप्न के समान असत्य मानते हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अरण्यकांड 70। भगवत भक्ति का यह महत्व हिंदी के भक्ति कालीन प्राय सभी कवियों ने दिया है।